अध्याय 24 ब्राह्मण राज्य सुंग कर्ण और सातवाहन। सुंग वंश की स्थापना अनेक साक्ष्यों से प्रकट होता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मार डाला और तत्पश्चात सुंग वंश की स्थापना की। पहला, प्रमुखतया पुराणों में पुष्यमित्र वस्तु सेनानी समृद्धित्य बृहद्रथम यह उल्लेख मिलता है। दूसरा, वायु पुराण बृहद्रथ के स्थान पर बृहद्दश्व का नाम लेता है। इन दोनों नामों को एक ही व्यक्ति का नाम समझना चाहिए। तीसरा, और उपयुक्त घटना का और अधिक स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार मौर्य बृहद्रथ प्रज्ञा दुर्बल शासक था। एक बार जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तब उसके सेनानी पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर डाली। अपनी संपूर्ण सेना के सम्मुख ही राजा की हत्या कुछ विशेष महत्व रखती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या के पीछे एक पूर्व निर्धारित योजना थी। ब्राह्मणों का संगठन। अशोक की बौद्ध नीति ने सैनिक दृष्टिकोण से देश को नितांत निर्बल बना दिया था। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के पश्चात ही देश के चतुर्दिक विपत्ति के बादल मंडराने लगे। मौर्य साम्राज्य के अधीनस्थ राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी प्रारंभ कर दी। उधर विदेशी आक्रमणकारी भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी श्रृंखला खटखटाने लगे। अशोक के उत्तराधिकारियों में कोई भी ऐसा न हुआ जो भारतवर्ष को आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण से बचाता। राजनीतिक अस्थिरता ने धर्म और संस्कृति के सबल आधारों को भी हिलाना प्रारंभ कर दिया। जिस समय भारतवर्ष इस संकटापन्न एवं संशयात्मक परिस्थिति से गुजर रहा था और जिस समय उसका पतन एवं पराभव अवश्यंभावी सा प्रतीत हो रहा था, उसी समय देश में एक महान क्रांति हुई जिसने भारतवर्ष के इतिहास की दिशा को ही मोड़ दिया। यह क्रांति थी अहिंसात्मक बौद्ध नीति के पोषक अशोक के वंशज अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या और शस्त्र तथा शास्त्र के उचित सामंजस्य का प्रतिपादन करने वाले ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धारक सुंग वंश के नरेश पुष्यमित्र का सिंहासनारोहण। क्षत्रिय देश के शासक और संरक्षक थे, परंतु अहिंसावादी बौद्ध धर्म ने बहुसंख्यक क्षत्रियों को अपने वर्ण विहित कर्म से विरत कर दिया था। वे राजकर्म और युद्ध कर्म से विमुख होकर निवृत्ति मार्गी होते जा रहे थे। इस परिस्थिति में धन जन की सुरक्षा को भी नहीं वरन देश की संस्कृति सभ्यता और धर्म को भी खतरे में डाल दिया था। ब्राह्मण देश के व्यवस्थापक थे, अतः अंतिम मौर्य नरेशों के शासनकाल की कुव्यवस्था को देखकर वे क्षुब्ध हो उठे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, भारत की संस्कृति सभ्यता और सुरक्षा के लिए उन्होंने स्वयं शस्त्र धारण किए। ब्राह्मण पुष्यमित्र सुंग का प्रधान सेनापतित्व इसी परिस्थिति की ओर संकेत करता है। उसके अतिरिक्त यदि उसकी सेना में अन्य बहुसंख्यक ब्राह्मण सैनिक विद्यमान रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कम से कम इतना तो निश्चित है कि मौर्य सेना सम्राट बृहद्रथ से असंतुष्ट थी। सेनापति पुष्यमित्र ने उसे अपनी ओर मिला लिया था और एक दिन सैन्य निरीक्षण के निमित्त अपने प्रज्ञा दुर्बल स्वामी बृहद्रथ को आमंत्रित करके संपूर्ण सैनिकों के समक्ष ही उसकी हत्या कर डाली। सैनिकों के समक्ष सेनापति द्वारा नरेश की हत्या, फिर भी सैनिकों का मौन रहना और तत्पश्चात उसी सेनापति का रोहण आकस्मिक घटनाएं न थी। वे एक पूर्व निमित्त योजना के परिणाम स्वरूप हुई थी। बृहद्रथ की हत्या के पीछे बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मण धर्म का विद्रोह काम कर रहा था। विपथ क्षत्रिय वर्ग के विरुद्ध व्यवस्थापक ब्राह्मण धर्म की योजना काम कर रही थी। पुष्यमित्र कौन था? पुष्यमित्र और उसके वंशजों अग्निमित्र, वसुमित्र आदि के नामों में अंत में मित्र शब्द को जोड़ा हुआ देख कर भी श्री हरप्रसाद शास्त्री ने प्रारंभ में यह मत प्रस्तुत किया था कि ये राजा पार्षिक थे और मित्र की उपासना करते थे। प्राचीन पार्षिकों में मित्र की उपासना का बड़ा प्रचार था। कालांतर में शास्त्री महोदय ने अपने मत का स्वयं परित्याग कर दिया और पुष्यमित्र को ब्राह्मण घोषित किया। दिव्यावदान पुष्यमित्र को मौर्य कहता है, परंतु स्पष्टता अब दिव्यावदान के लेखक की भूल है। भूल से ही उसने मौर्य राजाओं की सूची में पुष्यमित्र की गणना कर ली है। पुष्यमित्र की जाति के विषय में जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं वे उसे ब्राह्मण घोषित करते हैं। मालविका अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग के भाई अग्निमित्र सुंग को बैम्बिक वंशी बताता है। कुछ विद्वान बैम्बिक वंश को बिम्बिसार वंश से संबद्ध करते हैं, परंतु इसके लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। परंतु फिर भी यह प्रश्न उठता है कि आखिर बैम्बिक वंशज थे कौन। बौद्धायन स्रोत सूत्र के अनुसार बैम्बिक कश्यप गोत्री थे। यह गोत्र ब्राह्मणों का था, अतः सुंग कश्यप गोत्री ब्राह्मण सिद्ध होते हैं। इस मत की पुष्टि हरिवंश से होती है। हरिवंश एक औधिभज्य कश्यप ब्राह्मण सेनानी का उल्लेख करता है जिसने कलयुग में अश्वमेघ यज्ञ किया था। डॉक्टर जायसवाल ने इस सेनानी का समीकरण पुष्यमित्र सुंग के साथ किया है। पुष्यमित्र सुंग औद्रिभज अर्थात आकस्मिक रूप से उदय होने वाला था क्योंकि वह अपने स्वामी को मारकर राजा बना था। समस्त साक्ष्य पुष्यमित्र को सेनानी कहकर ही पुकारते हैं। पुनः अन्य साक्ष्यों से प्रकट होता है कि उसने एक ही नहीं वरन दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे। इस प्रकार हरिवंश का वर्णन पुष्यमित्र के साथ मेल खाता है। अतः डॉक्टर जायसवाल का समीकरण पूर्णतः ग्राह्य प्रतीत होता है, परंतु जाति संबंधी समस्या का अंत यही नहीं हो जाता क्योंकि पुराण पुष्यमित्र को काश्यप गोत्री बैम्बिक न कहकर सुंग कहते हैं। हर्षचरित यद्यपि पुष्यमित्र को सुंग नहीं कहता तथापि उसके वंश के एक अनुवर्ती राजा को सुंग अवश्य कहता है। इस प्रकार हर्षचरित के साक्ष्य से पुष्यमित्र का सुंग जाति होना सिद्ध होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ये सुंग कौन था। वंश ब्राह्मण एक सौंगायनी को आचार्य बताता है। वेदारण्यक उपनिषद में एक सौंगी पुत्र आचार्य का उल्लेख है। लाट्यायन शौत सूत्र में एक सुंग का उल्लेख हुआ है। इस पर टीकाकार का मत है कि सुंग आचार्य थे। आश्वलायन शौत सूत्र के आधार पर मैकडोनल्ड और कीथ ने भी यह मत प्रकट किया है कि सुंग आचार्य होते थे। प्राचीन भारत में प्राय ब्राह्मण ही आचार्य होते थे, अतः सुंगों का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। इस मत की पुष्टि अन्य प्रकार से भी होती है। पतंजलि पुष्यमित्र के राज पुरोहित थे। उन्होंने एक स्थान पर यह कहा है कि ब्राह्मण राज्य सर्वोत्कृष्ट होता है। यदि पुष्यमित्र सुंग ब्राह्मण न होता तो उसका राज पुरोहित कभी भी इस प्रकार का स्पष्ट कथन न करता। पुनः मनु भी पुष्यमित्र के समकालीन अथवा निकटकालीन प्रतीत होते हैं। अपनी मनुस्मृति में उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि वेद और शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति ही सेनापतित्व राज्य दंड नेतृत्व और सर्वलोकाधिपत्य के योग्य होता है। यह मत प्रकट करते समय कदाचित मनु की दृष्टि ब्राह्मण सेनानी एवं नरेश पुष्यमित्र की ओर थी। वेद शास्त्र का सम्यक अध्ययन व्यवहारिक रूप से में ब्राह्मण ही करते थे। अतः इस उल्लेख से मनु के समकालीन अथवा निकटकालीन पुष्यमित्र का ब्राह्मण होना ध्वनित होता है। यही नहीं, तिब्बती लेखक तारानाथ पुष्यमित्र को ब्राह्मण बताता है। पाणिनि और आश्वलायन सूत्र के अनुसार सुंग भारद्वाज गोत्री थे। भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों का था। इससे भी पुष्यमित्र सुंग का ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। सारांशतः पुष्यमित्र की जाति के विषय में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, पुष्यमित्र पार्षिक था। आज इस मत को कोई भी नहीं मानता। दूसरा, पुष्यमित्र मौर्य था। यह दिव्यावदान के लेखक की भूल का परिणाम है। तीसरा, पुष्यमित्र काश्यप गोत्री बैम्बिक ब्राह्मण था। यह मत संभव है। चौथा, पुष्यमित्र भारद्वाज गोत्री सुंग ब्राह्मण था। यह मत सबसे अधिक सबल और मान्य प्रतीत होता है। तिथि क्रम पुराणों के अनुसार मौर्य ने 137 वर्ष तक राज्य किया। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण की तिथि 322 ईस्वी पूर्व मानी है। अतः मौर्य वंश का अंत 185 या 84 ईस्वी पूर्व के लगभग हुआ होगा। यही तिथि पुष्यमित्र सुंग के सिंहासनारोहण की भी हुई। थेरवली के लेखक मेरुतुंग के अनुसार मौर्य ने केवल 108 वर्ष राज्य किया और पुष्यमित्र सुंग ने 30 वर्ष तक। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस लेखक ने 137 वर्ष के मौर्य शासन काल को 108 वर्ष और 30 वर्ष के दो भागों में बांट दिया है। अनुमानतः पुष्यमित्र मौर्य शासन काल में ही 30 वर्ष तक अवंती में अधीन शासक के रूप में राज्य करता रहा था। वह नाम मात्र को ही मौर्य साम्राज्य के अधीन रहा होगा। व्यवहारिक रूप में वह मौर्य साम्राज्य की निर्बलता से लाभ उठाकर स्वतंत्र प्राय हो गया होगा। मेरुतुंग प्रमुखतः अवंती नरेशों की तालिका देता है। अतः उसने अवंती के स्वतंत्र प्राय गवर्नर पुष्यमित्र का भी नाम उल्लेख किया है। प्राणों का कथन है कि पुष्यमित्र ने 26 वर्ष तक राज्य किया था। अतः उसकी मृत्यु 148 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई होगी, परंतु वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण के कथनानुसार उसने 60 वर्ष तक राज्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन पुराणों ने पुष्यमित्र सुंग का 30 वर्ष का वह काल भी जोड़ लिया है जब वह मौर्य साम्राज्य के अधीनस्थ अवंती में गवर्नर के रूप में शासन करता था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि उसकी अधीनता नाम मात्र को ही थी। व्यवहारिक रूप में यह पूर्णतः स्वतंत्र था। इसी से इन दो पुराणों ने उपयुक्त भूल की। सेनापति की उपाधि पुराणों हर्षचरित मालिकाग्निमित्र और अयोध्या अभिलेख सर्वत्र पुष्यमित्र के लिए सेनापति की उपाधि का प्रयोग किया गया है। इसके विरुद्ध पुराणों और मालिकाग्निमित्र आदि में उसके पुत्र अग्निमित्र के लिए राजा की उपाधि मिलती है। इस पर शंकर पांडुरंग और विल्सन महोदय ने यह मत प्रस्तुत किया था कि वास्तव में पुष्यमित्र कभी भी राजा न हुआ था। उसने विद्रथ को मारकर जो सिंहासन प्राप्त किया था उस पर अपने पुत्र अग्निमित्र को ही आसीन कराया था। प्रकार सुगवंश का सर्वप्रथम राजा अग्निमित्र ही था, परंतु यह मत नितांत असंगत है। पुराण पुष्यमित्र को सुंगवंश का संस्थापक बताते हैं और साथ ही उसके 3 वर्षीय अथवा 60 वर्षीय शासनकाल का भी उल्लेख करते हैं। महाभाष्य मालिका मालविका अग्निमित्र अश्वमित्र और अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने ही अश्वमेघ यज्ञ किया था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार उसी ने अश्व की रक्षा के लिए अपने पौत्र वसुमित्र के साथ 100 राजा भेजे थे। बात यह थी कि पश्चिमी वेदर्थ का सेनापति था। सेनापति के रूप में वह चतुर्दिग प्रख्यात था। राज्य प्राप्त करने के पश्चात भी उसने लोकविदित सेनापति के विरुद्ध को भी धारण रखा। प्रकार के उदाहरण इतिहास में अन्यत्र भी मिलते हैं। मुगल सम्राटों ने अपने अधीनस्थ राज्य हैदराबाद में अपना निजाम नियुक्त किया था। मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य हो गया, परंतु फिर भी वहां के शासक निजाम ही कहलाते रहे। विदर्भ युद्ध। मालविका अग्निमित्र का कथन है कि विदर्भ का राजा यज्ञसेन था। इस नाटक में वह अचिराधिपति और नवसंगरोपण शिथिल तरु कहा गया है। इन शब्दों से प्रकट होता है कि यह राजा हाल ही में शीर्षासीन हुआ था और इसी कारण से वह अधिक शक्तिशाली न था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार यह विदर्भ नरेश विगत मौर्य नरेश विहद्रथ के मंत्री का संबंधी था और शुंगो का प्रकृत मित्र था। इन उल्लेखों से प्रकट होता है कि जिस समय बृहद्रथ जीवित था उसी समय राज्यसभा में दो परस्पर विरोधी दल थे। एक दल का नेता सेनापति पुष्यमित्र था और दूसरे दल का नेता मंत्री। पुष्यमित्र ने राजा के ऊपर जोर डालकर अपने पुत्र अग्निमित्र के लिए विदिशा की गवर्नरी ले ली थी। इसी प्रकार उसके विरोधी नेता मंत्री ने अपने पक्षपाती यज्ञसेन को विदर्भ की गवर्नरी दिला दी थी। जिस समय पुष्यमित्र वेदर्थ को मार कर स्वयं राजा बन बैठा उस समय उसने अपने विरोधी मंत्री को बंदी बना लिया। विदर्भ का गवर्नर यज्ञसेन मंत्री का पक्षपाती था, अतः उसने पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मालविका अग्निमित्र के अनुसार कुमार माधव सेन यज्ञसेन का संबंधी था, परंतु उसे पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने अपनी ओर मिला लिया था। जिस समय माधव सेन अग्निमित्र से मिलने जा रहा था उस समय मार्ग में यज्ञसेन ने उसे बंदी बनवा लिया। अग्निमित्र ने अपने मित्र माधव सेन को मुक्त करने की मांग की। इस पर यज्ञसेन ने उत्तर दिया कि जब तक पुष्यमित्र मंत्री को अपने कारागार से मुक्त नहीं करेगा तब तक मैं भी तुम्हारे मित्र माधव सेन को मुक्त न करूंगा। बस इसी बात पर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का सविस्तर वर्णन नहीं मिलता, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र की विजय हुई, माधव सेन को मुक्त कर दिया गया और तत्पश्चात विदर्भ राज्य दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग यज्ञसेन के पास ही रहा और दूसरा भाग अग्निमित्र के सहयोगी और मित्र माधव सेन को मिला। कदाचित दोनों राज्यों के बीच की सीमा वर्धा नदी मानी गई। यज्ञसेन को आधा राज्य तो मिल गया, परंतु संभवतः उसे पुष्यमित्र की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। यमन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय भारतवर्ष पर यवनों का आक्रमण हुआ था। इसके अनेक साक्ष्य हैं। पहला, पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि के अंधत्तन रंग को समझते हुए पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दो उदाहरण दिए हैं। अरुणद यमुना साकेतम अर्थात यमुनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया। अरुणद यमुना माधी काम अर्थात यवनों ने माधिमिका पर आक्रमण किया। अंधतन रंग के प्रयोग का एक विशेष महत्व है। यह लकार भूतकाल की उस सर्वविदित घटना के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पीठ पीछे घटी हो, परंतु यदि कोई उसे देखना चाहता तो जाकर देख सकता था। इस नियम के अंतर्गत पतंजलि ने जो दो उदाहरण दिए हैं उनसे यही प्रकट होता है कि यवन आक्रमण पतंजलि के जीवन काल में ही हुआ था। उन्होंने उस आक्रमण को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा था, परंतु यदि देखना चाहते तो साकेत और माधिमिका में जाकर उसे स्वयं देख सकते थे। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे, अतः स्पष्ट है कि यमन आक्रमण पुष्यपुत्र शुंग के काल में हुआ था। दूसरा, गार्गी संहिता का युगपुराण। युगपुराण गार्गी संहिता का एक भाग है। इसमें भी यमन आक्रमण का वर्णन है। तथा साकेत माक्रम में पांचाला ने मधुरास्त था यमुना दृष्ट विक्रांत प्राप्य शरंती कुसुम ध्वजम तत पुष्य पुरे प्राप्ते कदमे प्रथिते हिते आकुला विश्वा सर्वे भविष्यंती न संशय। इस वर्णन से प्रकट होता है कि यवनों ने साकेत पांचाल और मथुरा पर आक्रमण किया और तत्पश्चात वे कुमुद ध्वज तक पहुंच गए। उनके आक्रमण से चतुर्दिक अव्यवस्था फैल गई। तीसरा, मालविका अग्निमित्र। कालिदास के इस नाटक में पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेघ का वर्णन है। यज्ञ का अश्व घूमते घूमते सिंधु के दक्षिणी तट पर पहुंच गया। वहां उसे यमुनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ जिसमें पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने यमुनों को पराजित किया और अश्व को छोड़ दिया, अश्व को छुड़ा लिया। यमन आक्रमण का नेता कौन? पुष्यमित्र शुंग के समय में यमन आक्रमण हुआ इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इस आक्रमण का नेता कौन था? उपयुक्त साक्ष्यों में कहीं पर भी इस यमन आक्रमण के नेता का नाम नहीं दिया गया है। इसी से संपूर्ण प्रश्न अति विवादग्रस्त हो गया है। इस प्रश्न पर निम्नलिखित मत दिए जाते हैं। पहला, गोल्डस्टुकर रैप्सन और स्मिथ आदि के मतानुसार इस यमन आक्रमण का नेता मिनेंडर था, क्योंकि इस यूनानी नरेश की मुद्राएं भारतवर्ष के अनेक स्थानों पर पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त मिलिंद पन्हों से प्रकट होता रहा है कि मिनेंडर अर्थात मिलिंद भारतीय इतिहास में विशेष रूप से प्रख्यात हो गया था। दूसरा, भंडारकर राय चौधरी और जायसवाल आदि के मतानुसार यवन आक्रमणकारों डेमटियस था। इसमें कोई संदेह नहीं कि डेमटियस ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था, परंतु कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि वह स्वयं पाटलिपुत्र तक पहुंचा था। पंजाब की हाइपेसिस व्यास नदी के पश्चिम में ही बह रहा था। इस नदी के पूर्व में उसकी मुद्राएं नहीं मिलती। स्टेन कोनोव और जायसवाल महोदय का मत था कि आती गुम्फा अभिलेख में यमन राज दिमित का उल्लेख है। जब खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया तो दिमित मथुरा भाग गया, परंतु अभिलेख का यह पाठ नितांत अशुद्ध है। इस अभिलेख में दिमित का कोई उल्लेख नहीं है। तीसरा, अभी हाल ही में श्री एन घोष ने कुछ विद्वानों की पुरानी धारणा का पुनरुद्धार किया था। भारतवर्ष पर एक नहीं वरन दो यवन आक्रमण हुए। एक आक्रमण का नेता डेमेटियस था और दूसरे का मिनेंडर। प्रथम आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल के प्रारंभ में हुआ था और द्वितीय उसके शासनकाल के अंत में। घोष महोदय का मत था कि पतंजलि और गार्गी संहिता में जिस आक्रमण का उल्लेख है वो प्रथम आक्रमण था। इसका नेता डेमेटियस था। उसने न केवल माध्यमिका और साकेत को जीत लिया वरन पाटलिपुत्र तक के संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया। पाटलिपुत्र पर उसका अधिकार हुआ अथवा नहीं या निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। गार्गी संहिता में प्रपशंति कुसुम ध्वजम शब्दों का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ है पाटलिपुत्र जीतेंगे भी हो सकता है और पाटलिपुत्र पहुंचेंगे भी, परंतु यह मत न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। किसी भी साक्ष्य में यह नहीं कहा गया है कि डेमटियस कभी भी व्यास नदी के पूर्व में गया था। गार्गी संहिता के वर्णन से प्रकट होता है कि पाटलिपुत्र तक पहुँच जाने के पश्चात कुछ समय तक यमनों के ने भारतवर्ष के अधिकृत प्रदेश पर शासन किया था। यदि वह आक्रमण अधिकार और शासन डेमटियस ने किया था तो फिर उसकी मुद्राएं उत्तरी भारत में क्यों नहीं मिलती। सिंधु नदी के पूर्व में उसकी एक भी मुद्रा नहीं मिली है। उसकी जो एक मुद्रा तक्षशिला से उपलब्ध हुई है वह भी व्यापार अथवा यात्रा के संबंध में आई होगी। इससे यह प्रकट होता है कि यदि किसी आक्रमण से डेमटियस का संबंध था भी तो वह स्वयं व्यास नदी के पूर्व में नहीं गया था। उसकी समस्त कार्यवाही इस नदी के पश्चिम में ही सीमित रही होगी। श्री एन घोष का पुनः कथन है कि द्वितीय यमन आक्रमण पुष्यमित सुंग के शासनकाल के अंत में हुआ था। इस आक्रमण का नेता मिनेंडर था। मालविका अग्निमित्र में जिस यमन युद्ध का वर्णन है वह इसी द्वितीय आक्रमण के संबंध में हुआ था, परंतु कोई भी साक्ष्य ऐसा नहीं हुआ जो निश्चित रूप में यह कहे कि आक्रमण पुष्यमित्र के शासन काल के प्रारंभ में ना होकर अंत में हुआ था। श्री घोष का कथन है कि इस युद्ध में यमनों का सामना पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने किया था। अतः निश्चित है कि उस समय तक स्वयं पुष्यमित्र वृद्ध हो चुका होगा और वह युद्ध उसके शासनकाल के अंतिम चरण में हुआ होगा, परंतु यह कथन भी अकाट्य नहीं है। मालविका अग्निमित्र के अध्ययन से प्रकट होता है कि युद्ध के समय वसुमित्र की आयु 20 वर्ष से अधिक न रही होगी। उसकी अल्पायु के कारण ही उसके लिए मालविका अग्निमित्र ने दारक शब्द का प्रयोग किया है। उसकी माता की व्यग्रता से भी उसकी अल्पवय प्रकट होती है। अत्यंत व्यग्रता के साथ उसकी माता उसकी दीर्घायु की कामना करती हुई दान दक्षिणा देती हैं। यदि वसुमित्र 20 वर्ष के लगभग था तो उसके पिता अग्निमित्र की आयु लगभग 40 वर्ष की और उसके पितामह पुष्यमित्र की आयु लगभग 60 वर्ष की रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि 60 वर्ष की अवस्था में सम्राट के रूप में पुष्यमित्र के शासनकाल का प्रारंभ हुआ था, क्योंकि सम्राट होने के पूर्व दीर्घकाल तक अवंती में मौर्य साम्राज्य के अधीनस्थ गवर्नर के रूप में शासन कर चुका था। अतः उसकी 60 वर्ष की आयु की अवस्था को देखकर यह कल्पना न करना चाहिए कि उस समय उसके शासन का अंतिम चरण था। उपयुक्त विवेचन के आधार पर वह उसका प्रारंभिक चरण भी हो सकता है। पुनः यह कहा जाता है कि युद्ध सिंधु नदी के तट पर पश्चिमी भारत में हुआ था और यह स्वाभाविक भी था। यह युद्ध पुष्यमित्र के शासनकाल के अंत में हुआ था और उस समय तक उसका साम्राज्य सम्यक रूप में संगठित हो चुका था। तो यमनों के लिए संभव न था कि वे सरलतापूर्वक संपूर्ण भारतवर्ष को आक्रांत करते हुए देश के भीतर घुस आते। शक्तिशाली पुष्यमित्र की सेनाओं ने यमनों को अपनी पश्चिमी सीमा सिंधु तट पर ही रोक दिया। यह द्वितीय युद्ध होगा और प्रथम युद्ध के बहुत बाद हुआ होगा। इसके विरुद्ध पतंजलि और गार्गी से प्रकट होता है कि तत्संबंधी आक्रमण में यमनों ने संपूर्ण उत्तरी भारत वर्ष को भी रौद डाला था और वे पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। इससे प्रकट होता है कि यह प्रथम आक्रमण था और उस समय हुआ था जबकि पुष्यमित्र सुंग नया नया सम्राट बना था। वृद्धत्त की हत्या और नवीन सुंग वंश की स्थापना ने देश में एक क्रांति कर दी थी। संपूर्ण परिस्थिति अस्थिर और अनिश्चित थी। ऐसी दशा में यमनों का कार्य सरल हो गया था और वे पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल की प्रारंभिक निर्बलता और व्यवस्था का लाभ उठाकर संपूर्ण उत्तरी भारत को पदाक्रांत करने में सफल हुए थे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र सुंग ने जो दो अश्वमेघ यज्ञ किए थे उनका संबंध दोनों यमन युद्धों से था। प्रथम आक्रमण में यमन संपूर्ण उत्तरी भारत को पदाक्रांत करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। इसके पश्चात भाग्य ने उनका साथ छोड़ दिया। पाटलिपुत्र सुंग की विजय हुई। उसने पाटलिपुत्र में यमन सेना को हराया और अपनी राजधानी का उद्धार किया। श्री घोष का मत है कि जिस अश्वमेध यज्ञ का पतंजलि ने उल्लेख किया है वह प्रथम यज्ञ था और पाटलिपुत्र की विजय के उपलक्ष्य में हुआ था। दीर्घकालीन शासन के पश्चात जब पुष्यमित्र सुंग अपनी शक्ति और समृद्धि के पराकाष्ठा पर पहुंच गया तब उसने अपने सम्राट पद को सूचित करने के लिए द्वितीय अश्वमेध यज्ञ किया। उसका उल्लेख मालविकाग्निमित्र में है। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु तट तक पहुंच गया जो उस समय साम्राज्य और यमन साम्राज्य के बीच की विभाजन रेखा थी। यहाँ यमनों ने घोड़े को पकड़ लिया, परिणाम स्वरूप दूसरा युद्ध हुआ। परंतु दो यमन आक्रमणों को प्रतिपादित करने वाले इस मत में अनेक निर्बलताएं हैं। कोई भी भारतीय अथवा विदेशी साक्षी नहीं कहता कि पुष्यमित्र सुंग के समय में दो यमन आक्रमण हुए। संभवतः पतंजलि, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्र सब एक ही आक्रमण की घटनाओं का उल्लेख करते हैं जिसमें प्रारंभ में तो यमनों की पराजय हुई परंतु फिर उन्हें निरंतर विजय मिलती गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र के दो यज्ञों का उल्लेख करता है। परंतु कोई भी साक्ष्य नहीं कहता कि प्रथम यज्ञ पाटलिपुत्र के उद्धार और यमन पराजय के उपलक्ष्य में किया गया था। यह भी संभव है कि यह यज्ञ वेदत्त की हत्या के पश्चात ही सिंहासन प्राप्ति पर अपना अथवा स्वदेशी नरेशों की अधीनता स्वीकार करने में किया गया हो। जो भी हो, प्रथम यज्ञ का यमन साम्राज्य पराजय के साथ संबंध जोड़ना कोरी कल्पना है। सबसे अधिक न्याय संगत मत तार्न महोदय का प्रतीत होता है। इसका मत है कि पुष्यमित्र सुंग के जीवन काल में जो यमन आक्रमण हुआ वह एक ही था। यद्यपि इसका नेता डेमेटियस था तथापि वह अपने भाई अपोलोडोट्स और अपने सेनापति मिनेंडर को भी लाया था। स्वयं डेमेटियस व्यास तक ही आया था। तत्पश्चात उसने अपने भाई अपोलोडोट्स को दक्षिण पश्चिमी भारत के विजय के हेतु और मिनेंडर को पूर्वी भारत की विजय के हेतु भेजा। पुष्यमित्र सुंग के शासन काल के प्रारंभ में अब हम इसी मत पर विचार करेंगे। हरप्रसाद शास्त्री का मत था कि यूनानी आक्रमण वेदत्त के शासनकाल में हुआ था और पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट के सेनापति के रूप में ही यूनानी को पराजित किया था। परंतु यह मत असंगत प्रतीत होता है। 187 ईस्वी के मैग्नेशिया युद्ध के पूर्व डेमोटियस ने के लिए यह संभव न था कि वह भारत पर आक्रमण करता है। उस युद्ध के पश्चात 4-5 वर्ष के ईरान में अपनी शक्ति संगठित करते हुए व्यतीत हुए होंगे। अतः उसका आक्रमण पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल के प्रारंभ में ही हुआ होगा। आक्रमण के समय डेमेटियस की आयु, डेमेटियस ने 206 ईस्वी पूर्व सम्राट एंटिओकस द्वितीय की पुत्री के साथ विवाह किया था। अतः उस समय कम से कम उसकी आयु 18 वर्ष की रही होगी। पुष्यमित्र सुंग 185-184 ईस्वी पूर्व में सिंहासनासीन हुआ। अतः आक्रमण के समय डेमेटियस की आयु लगभग 40 वर्ष की रही होगी। मिनेंडर का काल यह सामान्य वंश में उत्पन्न हुआ था परंतु अपनी योग्यता के कारण यह अति उच्च पद पर पहुंच गया था। डेमेटियस की मृत्यु लगभग 160 ईस्वी पूर्व हुई थी और मिनेंडर की लगभग 150-145 ईस्वी पूर्व। अपनी बात की मुद्राओं पर मिनेंडर पौर्णावस्था में प्रदर्शित किया गया तो स्पष्ट है कि मिनेंडर और डेमेटियस समवयस्क रहे होंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि डेमेटियस की मुद्राओं की अपेक्षा मिनेंडर की मुद्राएं कलात्मक दृष्टि से अतिहीन है। कला के पतन के लिए कुछ असमय चाहिए, अतः मिनेंडर डेमेटियस के बाद हुआ होगा। परंतु यह निष्कर्ष असंगत है। वास्तविक बात यह है कि मिनेंडर की मुद्राएं पूर्वी पंजाब में निर्मित हुई थी और डेमेटियस की मुद्राएं बैक्ट्रिया के मुद्राकार पंजाब के मुद्राकारों की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च कोटि के थे। यह कारण है कि डेमेटियस की मुद्राएं मिनेंडर की मुद्राओं से कहीं अधिक कलात्मक हैं। डेमेटियस और मिनेंडर, अपोलोडोरस का कथन है कि मैसिडोनिया निवासियों की अपेक्षा यूनानियों ने अधिक भारत विजय की। उन्होंने सिकंदर से भी अधिक लोगों को पराजित किया। विजय का सबसे अधिक श्रेय मिनेंडर को प्राप्त है और कुछ डेमेटियस को। अपोलोडोरस के इस कथन से प्रकट होता है कि डेमेटियस की अपेक्षा मिनेंडर ने अधिक प्रदेश जीते थे। ट्रेबो का कथन है कि यह बात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि मिनेंडर ने व्यास नदी पार की और वह पठांतर तक पहुंच गया था। यमुना से और अंतर का समीकरण सोन के साथ किया गया है। ट्रेबो के इस कथन से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने यह कहा था कि मिनेंडर व्यास को पार कर वह यमुना अथवा सोन तक पहुंच गया था। दूसरे स्थान पर स्ट्रेबो स्वयं कहता है कि सिकंदर के अनुगामी आक्रमणकारी पठांतर को पार करके गंगा और पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। स्पष्ट है कि आक्रमणकारी मिनेंडर ही रहा होगा। मिनेंडर और अपालोडोट्स। टोगोस का कथन है कि भारतीय विजय का श्रेय अपालोडोट्स और मिनेंडर को प्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि डेमेटियस एक साथ एकमात्र मिनेंडर ही नहीं वरन अपालोडोट्स भी आया था। टर्न महोदय का मत है कि अपालोडोट्स डेमेटियस का भाई था। आक्रमण की प्रगति, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि डेमेटियस अपने भाई अपालोडोट्स और अपने सेनापति मिनेंडर के साथ भारत विजय के लिए निकला। श्री ग्यूस ने हिंदू कुश और सिंधु नदी के बीच का संपूर्ण प्रदेश जीत लिया। इस विजित प्रदेश में उसने अपने पुत्र डेमेटियस और द्वितीय को शासक नियुक्त किया। इस प्रदेश में अपने पिता के नाम पर निर्मित डेमेटियस द्वितीय की मुद्राएं मिली हैं। डेमेटियस ने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया। यहाँ से अनुमानता अपने दक्षिण पश्चिम की ओर अपोलोडोरस और पूर्व की ओर मिनेंडर को भेजा। अपोलोडोरस भारत विजय का श्रेय डेमेटियस और मिनेंडर को देता है, परंतु टोगस यह श्रेय अपोलोडोरस और मिनेंडर को देता है। दोनों ही लेखक मिनेंडर का नाम लेते हैं। यह अनुमान है कि प्रमुख आक्रमण का भार मिनेंडर के ऊपर ही रखा गया था। तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक के उत्तरी भारत की विजय सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, अतः इस प्रदेश पर मिनेंडर ने ही आक्रमण और अधिकार किया होगा। दक्षिणी पश्चिमी भारत की विजय भारतवर्ष के साहित्यिक साक्ष्य यमन आक्रमण का उसी सीमा तक उल्लेख करते हैं जहाँ तक वह उत्तरी भारत से संबंध रखता है। वे उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम में हुए यमन आक्रमण का उल्लेख नहीं करते। अतः दक्षिणी पश्चिमी भारत पर हुए यमन आक्रमण के अध्ययन के लिए हमें अन्य साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला, अपोलोडोरस का कथन है कि यूनानियों ने पाटली सौराष्ट्र और सिरगटीस पर अधिकार कर लिया था। यह अधिकार अपोलोडोरस ने ही किया होगा, क्योंकि अपोलोडोरस का कथन है कि अपोलोडोरस की मुद्राएं थेरिगाजा में चलती थीं। दूसरा, पेरिप्लस का कथन है कि बेरिगाजा मुद्राएं बेरिगाजा में चलती थीं। दूसरा, पेरिप्लस का कथन है कि बेरिगाजा प्रदेश में सिकंदर के बनाए हुए शिविरों, मंदिरों, प्राचीरों और आदि के अवशेष मिलते हैं, परंतु सिकंदर तो उस प्रदेश में कहीं गया ही ना था। अतः स्पष्ट है कि भूल से पेरिप्लस ने अपोलोडोरस के स्थान पर सिकंदर का नाम उल्लेख कर दिया है। तीसरा, टॉलमी ने कक्ष के समीप थियोफिला नामक एक यूनानी नगर का उल्लेख किया है। टर्न महोदय का अनुमान है कि कदाचित थियोफिला डेमेटियस की पत्नी अथवा माता का नाम था। कदाचित इस नगर की स्थापना दक्षिणी पश्चिमी भारत की विजय के उपलक्ष्य में अपोलोडोरस ने की थी। टर्न महोदय का मत है कि दक्षिणी पश्चिमी भारत को जीतने के पश्चात अपोलोडोरस ने देश के भीतरी प्रदेश की ओर प्रस्थान किया और माध्यमिका को भी घेरा। पतंजलि ने माध्यमिका के घेरे का उल्लेख किया है। संभवतः यूनानियों ने इस पर अधिकार भी कर लिया था। उत्तरी भारत की विजय। अब हम मिनेंडर के सेनापतित्व में हुई उत्तरी भारत की विजय के विषय पर विचार करेंगे। जिस समय मिनेंडर उत्तरी भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उस समय पाटलिपुत्र के सिंहासन पर पश्चिमी सुंग आसीन था। उसने हाल ही में मौर्य नरेश वीरदत्त की हत्या करके मगध साम्राज्य प्राप्त किया था। अपनी प्रभुत्ता की घोषणा करने के लिए उसने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा। वहां उसे यमनों ने पकड़ लिया। परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुष्यमित्र के पौत्र वशुमित्र ने यमन सेना को पराजित कर दिया और घोड़े को मुक्त करा लिया। इसका वर्णन मालविका अग्निमित्र में मिलता है। यह मिनेंडर की प्रारंभिक हार थी, परंतु इसके पश्चात उसने द्विगुणित तैयारी से सुंग साम्राज्य पर आक्रमण किया और कुछ समय के लिए उसे हिला दिया। सिंधु नदी का समीकरण। परंतु आगे बढ़ने के पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि आखिर सिंधु नदी कौन सी थी जिसके किनारे यमन और सुंग सेनाओं में युद्ध हुआ था। कनिंघम महोदय ने मालविका अग्निमित्र में उल्लिखित सिंधु नदी को पंजाब की सिंधु नदी नहीं माना है। उनका मत है कि मालविका अग्निमित्र का तात्पर्य या तो सिंधु नदी से है, यमुना नदी की एक सहायक नदी है, अथवा उस काली सिंधु से है जो चंबल नदी की सहायक नदी है। दोनों ही नदियाँ मध्य भारत में बहती हैं। कनिंघम महोदय के मत को स्मिथ, टेन, कोनोव और ए एन घोष आदि विद्वानों ने स्वीकार किया है। मालविका अग्निमित्र में उल्लिखित सिंधु नदी को पंजाब की सिंधु नदी न मानकर मध्य भारत की सिंधु अथवा काली सिंधु मानने के निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, पश्चिमित्र विदिशा का नरेश था, अतः मध्य भारत की सिंधु अथवा काली सिंधु उसके राज्य की उत्तरी सीमा थी। परिणामतः सीमा पर ही युद्ध हुआ होगा, परंतु पश्चिमित्र विदिशा के साथ साथ मगध साम्राज्य का भी नरेश था। फिर मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पर पंजाब की सिंधु को क्यों ना माना जाए। दूसरा, यूनानियों का मथुरा तक आधिपत्य था, अतः पुष्यमित्र के यज्ञ का घोड़ा पंजाब की सिंधु तक न जा सकता था, परंतु उसका कोई प्रमाण नहीं है कि 184 ईसा पूर्व के पूर्व भी यूनानियों का मथुरा तक आधिपत्य था। तीसरा, मालविका अग्निमित्र का कथन है कि यूनानी और सुंग सेनाओं का युद्ध सिंधु सभ्यता के दक्षिणी तट पर हुआ था, परंतु पंजाब की सिंधु में दक्षिणी तट है ही नहीं, परंतु मध्य भारत की सिंधु अथवा काली सिंधु में भी स्पष्टतः दक्षिण तट नहीं है। ये दोनों एक स्थान पर एकमात्र तनिक सा दक्षिण की ओर मोड़ लेती हैं, परंतु इतना छोटा मोड़ संभवतः 2000 वर्ष पूर्व पंजाब की सिंधु नदी के किसी स्थान पर भी रहा हो। इसके अतिरिक्त दक्षिण शब्द का अर्थ दाहिना भी होता है। इस प्रकार यह युद्ध संभवतः पंजाब की सिंधु नदी के दाहिने तट पर हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः मालविका अग्निमित्र का अर्थ दक्षिणी दिशा वाला तट नहीं है। ऐसी दशा में हमें मालविका अग्निमित्र में उल्लेखित सिंधु से पंजाब की सिंधु नदी ही समझना चाहिए। कदाचित प्रारंभ में पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र से लेकर पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। पुनः आक्रमण अस्तु सिंधु तट पर पराजित होने के पश्चात कदाचित कुछ दिन तक मिनिंडर ने पंजाब में अपना संगठन किया और तदुपरांत सुंग साम्राज्य पर फिर आक्रमण कर दिया। इस बार उसे आशातीत सफलता मिली। प्रारंभिक पराजय अथवा अवरोध के पश्चात निरंतर विजय की घटनाएं इतिहास में बहुधा देखी गई हैं। इस विषय पर बाबर का उदाहरण स्मरणीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिनिंडर ने सर्वप्रथम सागल अर्थात सियालकोट पर अधिकार जमाया। मिलिंद पन्हों के अनुसार सागल मिनिंडर की राजधानी था। इसके पश्चात उसने व्यास नदी पार की, जैसा कि स्ट्रैबो के पूर्व कुछ लेखकों ने कहा है। यद्यपि स्ट्रैबो को यह मानने में कठिनाई जान पड़ती है कि मिनिंडर यमुना तक पहुंच गया था, तथापि यह सत्य हो जाता है। गार्गी संहिता का कथन है कि यमुनों ने मथुरा पर आक्रमण किया था। यह नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है, अतः मिनिंडर ही यमुना तट तक पहुंचा होगा। यही नहीं, गार्गी संहिता के अनुसार मिनिंडर ने मध्य देश में साकेत और पांचाल प्रदेश पर भी अपना अधिकार कर लिया। तत्पश्चात वह गंगा तट पर पहुंच गया, जैसा कि स्ट्रैबो के कथन से प्रकट होता है। तत्पश्चात पाटलिपुत्र की बारी आई। गार्गी संहिता में भी इसका उल्लेख है। यदि स्ट्रैबो के लेख में इसामोस के स्थान पर सोमामोस का पाठ ठीक है तो गार्गी संहिता के कथन की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि पाटलिपुत्र सोन और गंगा के संगम पर था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि पाटलिपुत्र के ऊपर यवनों का अधिकार हो गया था अथवा नहीं। डॉक्टर जायसवाल के मतानुसार यवनों ने पाटलिपुत्र को घेरा अवश्य था, परंतु वे उस पर अपना अधिकार न जमा सके थे। जो भी हो, इतना निश्चित है कि प्रायः समस्त उत्तरी भारत यवनों के अधीन हो गया था। अब एकमात्र विदिशा का राज्य ही पुष्यमित्र के हाथ में रहा था, परंतु यवन अधिक समय तक संपूर्ण विजित प्रदेश पर अपना अधिकार न रख सके थे। जिस समय डेमेटियस अपनी भारत विजय में लगा था, उसी समय वैक्टिया में एक यूनानी यूक्रेटाडीज ने विद्रोह करा दिया था। डेमेटियस को पंजाब छोड़कर अपने देश में बैक्ट्रिया भागना पड़ा। वह अपने दल बल के साथ मथुरा में आ गया। इस प्रकार अवसर पाकर पुष्यमित्र सुंग ने पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा तक के संपूर्ण प्रदेश पर अपना पुनः अधिकार जमा लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने द्वितीय अश्वमेघ किया, जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। इस प्रकार मिनिंडर का राज अब केवल मथुरा और उसके पश्चिमी प्रदेश में ही शेष रहा। मथुरा के पूर्व का सारा प्रदेश पुष्यमित्र सुंग के अधिकार में आ गया। गार्गी संहिता का कथन है कि अपनी पारस्परिक कलह के कारण यूनानी अधिक समय तक मध्य प्रदेश में न टिक सकेंगे। इस कथन की पुष्टि यूनानी साक्ष्य करते हैं। ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार। ब्राह्मण और क्षत्रियों तथा ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में प्रभुत्ता प्राप्ति के हेतु दीर्घकाल से जो प्रतिद्वंदिता चल रही थी, उसकी परिणति सुंग काल में हुई। क्षत्रिय शासकों की बौद्ध नीति ने ब्राह्मण समाज को भी अधिक शुद्ध कर दिया था। अहिंसा मूलक नीति का अवलंबन लेकर मौर्य क्षत्रियों ने राष्ट्र की सुरक्षा, शांति, धर्म और संस्कृति के लिए भारी खतरा उत्पन्न कर दिया था। राज्य प्रशय पाकर श्रमण विचारधारा ने वेद प्रामाण्य ब्राह्मण की जन्मज सामान्यता, प्रवृत्ति मूलक, लोक संग्रह, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, यजन याजन आदि उसी सभी पर आघात किया था। अतः स्वाभाविक था कि ब्राह्मण समाज इस समण विचारधारा का घोर विरोधी होता। स्वयं पुष्यमित्र के राज पुरोहित ने इसी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध से लेकर अशोक तथा उसके कुछ उत्तराधिकारियों तक क्षत्रियों ने इस समण विचारधारा को विकसित करने में काफी योग दिया था। अतः वैदिक काल से ही सामाजिक श्रेष्ठता प्राप्ति के निमित्त ब्राह्मण और क्षत्रियों में जो शांतिपूर्ण संघर्ष चल रहा था, उसे दोनों के धार्मिक दृष्टिकोणों के मौलिक अंतर ने और भी तीव्र कर दिया। ब्राह्मण समाज धीरे धीरे अपना संगठन कर रहा था। 184 ईस्वी पूर्व तक आते जाते यह ब्राह्मण संगठन इतना बलशाली हो गया कि इसके बौद्ध धर्म एवं वर्ण निर्विशेषता के प्रबल प्रचारक अशोक के वंशज प्रज्ञा दुर्बल बृहद्दत्त को मारकर राजसत्ता स्वयं हस्तगत कर ली। यह एक महान क्रांति थी। इसके पीछे ब्राह्मणों की स्वार्थ चिंता और राष्ट्र चिंता दोनों दृष्टि होती है। यदि यह क्रांति ना हुई होती, संभवतः मौर्य क्षत्रियों के सक्रम काल के लिए सैनिक संगठन के प्रति नितांत निरपेक्ष नीति देश को खोखला कर देती और दीर्घ काल के लिए देश विदेशियों की अधीनता में जकड़ जाता। ब्राह्मण संगठन के परिणाम स्वरूप ही ब्राह्मण सुंगों ने राज्य प्राप्त किया था, अतः स्वाभाविक ही था कि वे ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने की चेष्टा करते। ब्राह्मण धर्म और वर्ण और ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का जो कार्य ब्राह्मण सुंगों ने प्रारंभ किया था, उसे ब्राह्मण सातवाहनों ने भी सक्रम रखा था। उनके एक ब्राह्मण क्षत्रिय दपमान मर्दनश्य विनिर्वर्तति चातुर्वर्ण्य संकरश्य आदि उद्घोषों से यही तथ्य प्रकट होता है। इस प्रकार सुंगों, कन्वों और सातवाहनों का काल ब्राह्मणों का शासन काल था, ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का काल था। पुष्यमित्र सुंग का ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार, शस्त्र ग्रहण। ब्राह्मण होते हुए भी पुष्यमित्र सुंग ने क्षत्रियों की भांति जो शस्त्र और दंड ग्रहण किया वह पूर्णतः धर्म विहित था। मौर्यों के अहिंसात्मक एवं निर्बल राजनीति ने राष्ट्र की सुरक्षा और संस्कृति के लिए भारी खतरा उपस्थित कर दिया था। उत्तरकालीन मौर्यों का काल राष्ट्र के लिए आपत्काल बन गया था, अतः आपत धर्म के अनुसार ही पुष्यमित्र सुंग एवं उसके समर्थक ब्राह्मणों ने शस्त्र धारण किया था। पुष्यमित्र सुंग ने प्रज्ञा दुर्बल मौर्य नरेश विहदत्त की हत्या करके देश को भयंकर भीति से मुक्त किया था। उसकी इस राज हत्या का स्वयं मनु ने परोक्ष रूप से समर्थन किया है। वे कहते हैं कि धर्म से विचलित राजा अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वध को प्राप्त होता है। राष्ट्र के धन, जग, धर्म और संस्कृति का रक्षण ही राजा का प्रमुख धर्म था, परंतु वह इस धर्म का पालन करने में पूर्ण असमर्थ और निरपेक्ष था। अतः ऐसी आक्रमण राजा की हत्या करने में कोई पाप न था। जो कार्य अधार्मिक नंदराज का समन्वय विनाश कर महापंडित चाणक्य ने किया था, उसी के पुनरावृत्ति ब्राह्मण सेना नायक पुष्यमित्र के हाथ से हुई। अश्वमेघ यज्ञ। प्रतापी राजा के लिए ब्राह्मण ग्रंथों ने अश्वमेघ की योजना बनाई थी, अतः शीघ्र ही पुष्यमित्र सुंग ने इस योजना को भी कार्यान्वित किया। उसने एक नहीं वरन दो अश्वमेघ यज्ञ किए और इस प्रकार ब्राह्मण पंडित इस राजोचित संस्था का पुनरुद्धार किया जो शाशुनाग नंद और मौर्य राजाओं के शासनकाल में विलुप्त हो गई थी। पुष्यमित्र सुंग के अश्वमेघ के प्रमाण निम्नलिखित साक्ष्यों से मिलते हैं। पहला, अयोध्या अभिलेख। इसमें लिखा हुआ है कि सेनापति पुष्यमित्र ने दो अश्वमेघ किए। दूसरा, मालविका अग्निमित्र। कालिदास के इस नाटक से प्रकट होता है कि पुष्यमित्र ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था और अश्व का प्रधान रक्षक पुष्यमित्र का पौत्र वशुमित्र था। इस अश्व के कारण ही सिंधु के दक्षिण तट पर यवन सेना और शुंग सेना के बीच युद्ध हुआ था। वशुमित्र ने यवनों को हरा कर अश्व को मुक्त कर लिया था। तीसरा, पतंजलि का महाभाष्य। पाणिनि के वर्तमान लटलकार को समझाते हुए पतंजलि ने अपने महाभाष्य में एक उदाहरण दिया है। ए पुष्यमित्रम याजयाहम, अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। ब्राह्मण के नियम के अनुसार लटलकार का प्रयोग उस क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए होता है जो प्रारंभ तो हो गई हो परंतु समाप्त ना हुई हो। इस दृष्टि से पतंजलि के उदाहरण से यह प्रकट होता है कि वे पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे और जिस समय अपना महाभाष्य लिख रहे थे उस समय उन्हीं के पुरोहितत्व में पुष्यमित्र का अश्वमेघ चल रहा था। यह यज्ञ प्रारंभ तो हो गया था परंतु पतंजलि के लिखते समय तक समाप्त ना हुआ था। पतंजलि ने यमन आक्रमण के जो उदाहरण दिए थे वे भूतकाल की घटनाएं थी, परंतु अश्वमेघ यज्ञ का यह उदाहरण उनके वर्तमान काल की सक्रम घटना है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक अश्वमेघ यज्ञ पतंजलि के महाभाष्य में उल्लेखित यमन आक्रमण के पश्चात हुआ था। कदाचित यह यज्ञ उस समय हुआ था जब मिनेंडर पाटलिपुत्र का घेरा उठाकर मथुरा चला गया था और पुष्यमित्र ने पुनः पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा तक के प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस प्रकार पुष्यमित्र सुंग के दोनों अश्वमेघ यज्ञों का कालक्रम निम्न प्रकार है। पहला, मालविका अग्निमित्र में उल्लेखित अश्वमेघ उसका प्रथम अश्वमेघ था। वृहदत्त की हत्या करने के पश्चात स्वयं अपनी सार्वभौमता घोषित करने के ध्येय से पुष्यमित्र सुंग ने इसे किया था। दूसरा, पतंजलि के नहम भाष्य में उल्लिखित अश्वमेघ पुष्यमित्र का दूसरा यज्ञ था। पहले कहा जा चुका है कि सिंधु तट पर पराजित होने के पश्चात कुछ दिनों के उपरांत मिनेंडर ने सुंग साम्राज्य पर पुनः आक्रमण किया। इस बार उसे आशातीत सफलता मिली और वह पाटलिपुत्र तक पहुँच गया, परन्तु शीघ्र ही पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र से लेकर मथुरा तक के प्रदेश पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात उसने द्वितीय अश्वमेघ किया था। तीसरा, हरिवंश का कथन है कि एक औदिभज्य काश्यप ब्राह्मण अमर सेनानी कलयुग में पुनः अश्वमेध यज्ञ करेगा स्पष्ट है कि यहाँ पुष्यमित्र शुंग से ही तात्पर्य है। पतंजलि मनु और महाभारत। पहले कहा जा चुका है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। उन्होंने महाभाष्य की रचना की। जनता संस्कृत में रचित वेदों और वैदिक साहित्य को भूल रही थी। अपने प्राचीन रूपों प्रयोगों और अर्थों के कारण संस्कृत वाङ्मय जनता के लिए दुर्बोध हो रहा था। इस दुर्बोधता ने साहित्य धर्म और संस्कृति की प्रगति में एक बाहो अवरोध उपस्थित कर दिया था। इस अवरोध को दूर करने के लिए पतंजलि ने पाणिनि में पुरातन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाते हुए महाभाष्य लिखा। इसने संस्कृत वाङ्मय को पहले से अधिक सुबोध बना दिया। यही नहीं, सूत्रों को समझाते हुए पतंजलि ने जो उदाहरण दिए हैं उनसे उनकी ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान के प्रति सजगता दिखाई देती है। उन उदाहरणों से नवीन ब्राह्मण व्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। यूलर महोदय ने मनु का समय 200 ईस्वी पूर्व और 200 ईस्वी के बीच में रखा था। कालांतर में डॉक्टर जायसवाल ने यह मत प्रतिपादित किया है कि स्मृति के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि मनु भी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुस्मृति में उल्लेखित अनेक बातें पुष्यमित्र शुंग की जीवन घटनाओं का स्मरण दिलाती हैं। इन बातों को देखने से ऐसा अनुमान होता है कि मनुस्मृति का लेखक पुष्यमित्र शुंग को दृष्टि में रखकर ये बातें लिख रहा हो। क्या पुष्यमित्र बौद्ध द्रोही था? श्री एन घोष आदि कुछ विद्वानों का मत है कि पुष्यमित्र शुंग एकमात्र कट्टर ब्राह्मणवादी ही न था, वरन वह बौद्ध विरोधी भी था और उसने बौद्ध धर्म और बौद्ध अनुयायियों के साथ घोर अत्याचार किया था। अपने मत के पोषण में ये विद्वान निम्नलिखित प्रमाण देते हैं। पहला, पृष्ठभूमि। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप सिंहासन प्राप्त किया था। उसके समर्थन प्रमुखतः ब्राह्मणवादी थे, अतः स्वाभाविक ही था कि अपने समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने न केवल ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुत्थान का तुमुल प्रयास किया हो, वरन उसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म और अनुयायियों को भी नष्ट करने की निरंतर चेष्टा की हो। परंतु एक विशेष धर्म के प्रबल प्रचारक के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरे धर्म का प्रबल विनाशक भी हो। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादियों की सहायता में से राजसिंहासन प्राप्त किया था, अतः उनकी संतुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त था कि उनका राजा ब्राह्मण वर्ण ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था और ब्राह्मण संस्कृति के लिए पुनरुत्थान की चेष्टा करे। और वस्तुतः पुष्यमित्र ने यह सब किया भी। बस इसी से दोनों पक्षों के मंतव्य की पूर्ति हो गई। इसके आगे यह कथन है कि ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म और बौद्ध अनुयायियों के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए पुष्यमित्र शुंग को प्रेरित किया होगा तथा ब्राह्मण जनता को संतुष्ट करने के लिए स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध जिहाद बोली होगी। कोरी कल्पना है। क्या कोरी कल्पना है? भारतीय इतिहास हिंसात्मक धर्म युद्धों से परिचित नहीं है। जब बौद्ध राजधर्म ने ब्राह्मण धर्म के प्रति कभी भी हिंसा का प्रदर्शन नहीं किया तो ब्राह्मण राजधर्म बौद्ध धर्म के साथ वैसा घृणित व्यवहार कैसे करता? भारतवर्ष ने धार्मिक प्रतिद्वंदिता का हल कभी तलवार की धार से नहीं किया। तब भारतीय वर्णों और धर्मों की प्रतिद्वंदिता में यूरोप के रुधिर में धार्मिक विपल्यों की कल्पना करना अन्याय मूलक है। दूसरा, दिव्य अवदान का साक्ष्य। इस ग्रंथ का कथन है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य था और घोर बौद्ध विद्रोही था इस ग्रंथ से प्रतीत होता है कि जिस प्रकार बौद्ध अशोक ने 48 से 84,000 स्तूपों के निर्माण के द्वारा ख्याति प्राप्त की थी, उसी प्रकार ब्राह्मणवादी पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त करके ख्याति लाभ करना चाहा। अतः वह संपूर्ण देश में बौद्ध स्तूपों के विनाश के लिए घूमने लगा। सर्वप्रथम वह पाटलिपुत्र के कुकुटा राम को नष्ट करने गया। उसने 3 बार उसे नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु 3 बार वहां तुमुल सिंहनाद सुनाई दिया और वह भयभीत होकर भाग गया। इस प्रकार भारतीय सम्राट अपने समस्त दलबल के होते हुए भी उस कुकुटाराम को नष्ट न कर सका। पाटलिपुत्र का यह आराम तो देवी शक्ति से बच गया, परंतु अन्य आराम और स्तूप इतने भाग्यशाली न थे। अतः पुष्यमित्र मध्य देश में उन्हें नष्ट भ्रष्ट करता हुआ शाकल पहुंचा। वहां उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति मुझे शमर सीर देगा उसे मैं 100 दिनार दूंगा। इस प्रकार पश्चिमी भारत में बौद्ध धर्म के साथ घोर अत्याचार करता हुआ दक्षिण भारत की ओर मुड़ा, परंतु इस समय तक उसके पापों का घड़ा भर गया था। अतः दक्षिण में वह एक पक्ष के द्वारा मार डाला गया। परंतु दिव्यावदान के ऊपर हम पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते। इसके अनेक कारण हैं। पहला, यह बौद्ध बात की रचना है। दूसरा, यह बौद्ध ग्रंथ है, अतः ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण धर्म के पोषक के प्रति इसका सच द्वेष होना स्वाभाविक है। तीसरा, यह इतिहास से पूर्णतः परिचित नहीं है, उदाहरणार्थ यह स्वयं पुष्यमित्र को मौर्यवंशी कहता है। चौथा, उपयुक्त कथानक इतिहास नहीं कहानी है। पांचवा, शाकल में पुष्यमित्र की घोषणा करने की बात काल्पनिक है। यह नगर पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य में न था, उस पर सिलेंडर का अधिकार था, अतः दूसरे देश में विशेषतया बौद्ध नरेश के देश में जाकर बौद्ध विरोधी घोषणा करना संभव न था। पुनः पुष्यमित्र के समय में दिनार मुद्रा प्रचलित न थी, फिर भी उसके देने की बात ही कहां उठती है। तीसरा, तारानाथ का साक्ष्य। तारानाथ का कथन है कि पुष्यमित्र शुंग ने मध्य देश से जालंधर तक बहुसंख्यक बौद्धों का वध किया और उसके स्तूपों तथा विहारों को ध्वस्त किया, परंतु तारानाथ के मत को स्वीकार करने में भी संकोच होता है, क्योंकि पहला, यह लेखक भी बौद्ध था और स्वभावतः ब्राह्मण धर्म के प्रबल प्रचारक पुष्यमित्र शुंग के प्रति असहिष्णु होगा। दूसरा, यह लेखक भी बहुत बात का है। तीसरा, यह लेखक विदेशी है और पुष्यमित्र शुंग के समय की घटनाओं की सूचना इसे दूसरे साधनों से मिली, अतः उसने कथानों को कांश होना स्वाभाविक ही था। चौथा, आर्य मंजूश्री मूल कल्प आदि यदि इस समीकरण को ठीक मान भी लिया जाए तो भी इस ग्रंथ के प्रत्येक वर्णन को स्वीकार करने में अनेक आपत्तियां उठ खड़ी होती हैं। यह ग्रंथ भी बौद्ध ग्रंथ है, बात की रचना है तथा अनेकानेक क्विदंतियों और कपोलिकल्पित बातों से भरा पड़ा है, अतः इसमें जो पुष्यमित्र विषय सामग्री है उसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। समस्त साक्ष्य बौद्ध है। प्राचीन भारत का इतिहास कहीं कहीं पर इतना संदिग्ध और विवादग्रस्त प्रतीत होता है कि एकमात्र किसी एक साक्ष्य में उल्लिखित बात पर सहसा पूर्णतः विश्वास नहीं होता। किसी बात के ग्रह होने के कारण यह परम आवश्यक है कि उसकी पुष्टि अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों द्वारा हो जाए। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहने वाले साक्ष्य सबके सब बौद्ध हैं। इन बौद्ध साक्ष्यों को छोड़कर कोई भी ब्राह्मण जन अथवा अन्य स्वतंत्र विदेशी साक्ष्य पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही नहीं कहता। किसी भी शिलालेख अथवा मुद्रालेख में बौद्ध संप्रदाय के प्रति उसके तथाकथित अत्याचारों का संकेत तक नहीं है। फिर एकमात्र बौद्ध साक्ष्य के आधार पर पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कैसे मान लिया जाए। अशोक के समय में बौद्ध धर्म राजधर्म बन गया था। बौद्ध भिक्षु समाज में अत्यधिक सम्मान्य माने जाने लगे थे। वे लोक में शास्त्रता और परामर्शदाता बन गए थे। बौद्ध विहारों के ऊपर राज्य की विशेष अनुकंपा हो गई थी। वे संख्या और समृद्धि दोनों में बढ़ रहे थे, परंतु पुष्यमित्र शुंग के सियाचनासीन होते ही सारी परिस्थिति बदल गई। न बौद्ध धर्म राजधर्म रहा और न बौद्ध भिक्षु लोक के शास्त्रता और परामर्शदाता। देश में ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण संस्कृति का पुनरुद्धार हुआ। इस संपूर्ण परिवर्तन का प्रमुख कारण था स्वयं पुष्यमित्र शुंग। अतः स्पष्ट है कि वही शुद्ध बौद्ध जगत के निश्चिम कोष का भाजन बनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध जगत के एक वर्ग ने पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मणवाद को जानबूझकर बौद्ध द्रोह का रूप दे डाला। कालांतर में आने वाले बौद्ध लेखकों ने भी इसी प्रतिष्ठित परंपरा का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण बौद्ध साहित्य में ही पुष्यमित्र शुंग का व्यक्तित्व कालीसाई से पुता हुआ मिलता है। परंतु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुष्यमित्र का बौद्ध द्रोह ऐतिहासिक घटना नहीं है। इस ग्रंथ का उल्लेख है कि कलयुग में गौमी मुख्य नामक एक राजा होगा, वह बौद्ध द्रोही होगा और पूर्व में लेकर पश्चिम में कश्मीर तक बौद्ध भिक्षुओं और विहारों का विनाश करेगा। अंत में एक यक्ष उसका वध करेगा। डॉक्टर पीसी बागजी गौमी मुख्य को गोलमी बख्य का रूपांतर मानते हैं। इस मत के अनुसार सेनापति से पुष्यमित्र का बोध होता है। यह संदेहपूर्ण है। पुष्यमित्र के धार्मिक सहिष्णुता। अधिकांश विद्वान पुष्यमित्र को एक धर्म सहिष्णु शासक मानते हैं। वे अपने मत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहला, शुंग काल में भरहुत बौद्ध गया और सांची के स्तूपों को पहले से विशाल बनाकर नया रूप दिया गया। भरहुत स्तूप के प्राचीर पर सुगनम रजी लिखा हुआ है, जिसका यह अर्थ है कि स्तूप का वह भाग शुंग काल में निर्मित हुआ था। यह कहा जा सकता है कि यह निर्माण कार्य पुष्यमित्र के किसी उत्तराधिकारी के शासनकाल में हुआ होगा, पुष्यमित्र के शासनकाल में नहीं। परंतु यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि पुष्यमित्र के सभी उत्तराधिकारी अपेक्षाकृत निर्बल शासक थे। उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे पुष्यमित्र की नीति के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध विद्रोह करके एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते। अधिक स्वाभाविक तो यही प्रतीत होता है कि पुष्यमित्र स्वयं धर्म सहिष्णु था और उसके उत्तराधिकारियों ने भी उसी सहिष्णुता का अनुसरण किया। दूसरा, दिव्यावदान से विदित होता है कि पुष्यमित्र ने कुछ बौद्ध मंत्रियों को नियुक्त किया था। तीसरा, पुष्यमित्र के शासनकाल में उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का गवर्नर था। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र की राज्यसभा में भगवती कौशिकी नामक एक स्त्री थी जो संभवतः बौद्ध धर्मावलंबी थी। बृहस्पति मित्र हाथी गुम्पा अभिलेख का उल्लेख है कि कलिंग नरेश खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया और बृहस्पति मित्र को पराजित किया। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि बृहस्पति मित्र पुष्यमित्र शुंग ही था। इस समीकरण की पुष्टि में वे कहते हैं कि ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति पुष्य नक्षत्राधिपति है, परंतु इस समीकरण को स्वीकार करने में कई कठिनाइयां प्रस्तुत हो जाती हैं। पहला, यमत की बृहस्पति पुष्य का नक्षत्राधिपति है और इसीलिए शुंग नरेश कभी पुष्य मित्र और कभी बृहस्पति मित्र कहलाता था। नितांत कल्पना जन्य है, इस प्रकार का कोई साक्ष्य उदाहरण कभी भी नहीं मिलता। दूसरा, दिव्यावदान में पुष्य मित्र और बृहस्पति मित्र दोनों का उल्लेख है। उसमें पुष्य मित्र की राजधानी पाटलिपुत्र और बृहस्पति मित्र की राजधानी राजगृह प्रतीत होती है। अतः पुष्य मित्र और बृहस्पति मित्र दो भिन्न भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तीसरा, आज अधिकांश विद्वान खारवेल का शासनकाल ईसवीपूर्व प्रथम शताब्दी में रखते हैं, अतः उसका समकालीन बृहस्पति मित्र भी ईसवीपूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था, परंतु पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल तो 184 ईसवीपूर्व से लेकर 148 ईसवीपूर्व तक था। तथा पभोषाभिलेख में आषाढ़सेन के भांजे राजा बृहस्पति मित्र का उल्लेख है। आषाढ़सेन ने उदाक के 100वें वर्ष में एक गुहा का निर्माण कराया था। उदाक का समीकरण शुंग वंश के पांचवें राजा के साथ किया गया है, अतः वह पुष्यमित्र के बाद हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि आषाढ़सेन और उसका भांजा बृहस्पति मित्र भी पुष्यमित्र शुंग के बाद हुए होंगे। यही नहीं, इस अभिलेख में बृहस्पति मित्र का राजा बृहस्पति मित्र को राजा कहा गया है, परंतु पुष्यमित्र सदैव सेनानी अथवा सेनापति कहलाता था। इस प्रकार पुष्यमित्र और बृहस्पति मित्र का समीकरण नहीं हो सकता। पांचवां, बृहस्पति मित्र की कुछ मुद्राएं कौसम में मिली हैं। यदि वह पुष्यमित्र शुंग ही था तो फिर उसकी मुद्राएं विदिशा अथवा मगध में क्यों नहीं मिलती। राज्य विस्तार, कुछ विद्वानों का मत है कि पश्चिम में पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य पंजाब की सिंधु नदी तक विस्तृत था। इस मत की पुष्टि में निम्नलिखित उदाहरण दिए जाते हैं। पहला, मालविका अग्निमित्र में शुंग सेना और यमन सेना का युद्ध पंजाब की सिंधु के दक्षिणी तट पर हुआ था। दूसरा, तारानाथ का कथन है कि पुष्यमित्र ने मध्य देश से जालंधर तक के बौद्ध विहारों को नष्ट किया। तीसरा, दिव्यावदान का कथन है कि पुष्यमित्र ने शाकल में जाकर बौद्ध विरुद्ध घोषणा की थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रारंभ में पुष्यमित्र शुंग का राज्य सिंधु नदी तक विस्तृत था, जैसा कि मालविका अग्निमित्र के साक्ष्यों से प्रकट होता है। परंतु कालांतर में यमन आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसका बहुत सा भाग पुष्यमित्र के हाथ में से निकल गया। यद्यपि पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के गृह युद्ध से लाभ उठाकर पाटलिपुत्र पर पुनः अधिकार कर लिया था और पश्चिम में मथुरा तक के प्रदेश पर पुनः उसका आधिपत्य स्थापित हो गया था, तथापि मथुरा के आगे पश्चिम में यवनों का ही अधिकार रहा, जैसा कि मिनेंडर और उसके उत्तराधिकारियों का मुद्राओं से प्रकट होता है। इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मथुरा ही समझना चाहिए। तारानाथ और दिव्यावदान के कथन एकमात्र पुष्यमित्र शुंग के प्रारंभिक राज्य विस्तार का ही समीकरण दिलाते हैं। यमन आक्रमण के पश्चात जालंधर और शाकल दोनों ही पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य से निकल गए थे और उन पर यमनों का आधिपत्य हो गया था। जैन लेखक ने रुत्तुंग के कथनानुसार दक्षिण पश्चिम में अवंती पर पुष्यमित्र का अधिकार था। मालविका अग्निमित्र से प्रकट होता है कि दक्षिणी सीमा पर विदिशा पुष्यमित्र के साम्राज्य में था। दक्षिण में पश्चिमी शुंग के साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा नर्मदा नदी थी। इसकी पुष्टि मालविका अग्निमित्र से होती है। इस नाटक की कुछ प्रतियों में नर्मदा के स्थान पर मंदाकिनी का नाम मिलता है। कदाचित दोनों नाम एक ही नदी के नाम हैं। नर्मदा के दक्षिण में विदर्भ राज्य था। मालविका अग्निमित्र में वर्णित विदिशा विदर्भ युद्ध के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मत प्रस्तुत किया है कि विदर्भ ने भी पश्चिमी शुंग की अधीनता स्वीकार कर ली थी। दक्षिण पूर्व में कलिंग का राज्य पहले ही स्वतंत्र हो चुका था, अतः पश्चिमी शुंग का साम्राज्य स्वतंत्र कलिंग राज्य की सीमा को छूता था। पूर्व में पाटलिपुत्र पश्चिमित्र की राजधानी था। अयोध्या अभिलेख से सिद्ध होता है कि कौशल पश्चिमित्र के साम्राज्य के अंतर्गत था। संघ शासन, ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमित्र का विशाल साम्राज्य अनेक राज्यों का संघ था। इन राज्यों में अनेक शासन राज्य करते थे जो कदाचित अपने आंतरिक विषयों में पूर्ण स्वतंत्र थे। अनेक राज्यों पर स्वयं पश्चिमित्र शुंग के पुत्र शासन करते थे। वायु पुराण के साक्ष्य से प्रकट होता है कि पश्चिमित्र के 8 पुत्र एक ही समय में भिन्न भिन्न राज्यों पर राज्य करते थे। मालविका अग्निमित्र कम से कम उनके एक पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का शासक घोषित करता है। अयोध्या अभिलेख से प्रकट होता है कि कौशल प्रदेश पर सेनापति पुष्यमित्र का छठा पुत्र राज्य कर रहा था। पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी शुंग वंश में 10 राजा हुए। पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिडक, घोष, व्रजमित्र, भाग, देवभूत, इन सब ने 112 वर्ष तक राज्य किया। पुष्यमित्र के पुत्र और उत्तराधिकारी अग्निमित्र का नाम मालविका अग्निमित्र में भी मिलता है। इस नाटक से प्रकट होता है कि यह विदिशा का शासक था। रुवेलखंड में अनेक ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जिन पर अग्निमित्र का नाम मिलता है। जायसवाल महोदय का मत है कि इन मुद्राओं का अग्निमित्र अग्निमित्र शुंग ही है, परंतु कनिंघम महोदय ने इसका विरोध किया है। वे मुद्राओं के अग्निमित्र को उत्तरी पांचाल का कोई स्थानीय शासक मानते मानते हैं। अपने मत की पुष्टि में कनिंघम महोदय का कथन है कि अग्निमित्र की उपयुक्त मुद्राएं पांचाल के बाहर नहीं मिलती। अग्निमित्र के पश्चात ज्येष्ठ वसु ज्येष्ठ राजा हुआ। कुछ मुद्राओं के ऊपर ज्येष्ठ मित्र का नाम मिलता है, कदाचित दोनों एक ही राजा के नाम है। कुछ विद्वानों के मतानुसार कौशम में प्राप्त एक पाषाण खंड पर अंकित एक लेख में इस नरेश का नाम मिलता है। वसु ज्येष्ठ के पश्चात वसुमित्र का राजा हुआ। मालविका अग्निमित्र के अनुसार यह पुष्यमित्र का पौत्र अग्निमित्र का पुत्र था। वायु पुराण में वसुमित्र का उत्तराधिकारी आंध्रक मिलता है। विष्णु पुराण में उसका नाम उद्रक, भागवत पुराण में भद्रक और मत्स्य पुराण में अंतक मिलता है। पीछे पबोसा अभिलेख का उल्लेख किया जा चुका है। इसके अनुसार उदाव के 10वें वर्ष में राजा बृहस्पति मित्र के मामा आषाढ़ ने कश्यपी अहर्तों के लिए गुफा का निर्माण कराया था। एक अन्य पबोसा अभिलेख से प्रकट होता है कि आषाढ़सेन अहिच्छत्र का राज्यवंशी था। अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। डॉक्टर जायसवाल का मत है कि पबोमा अभिलेख में उल्लिखित उदाक सुंग नरेश उद्रक है। अहिच्छत्र में आषाढ़सेन का वंश उद्रक के अधीन सामंत वंश के रूप में शालन करता था। डॉक्टर बरुआ का कथन है कि पबोसा अभिलेख में उदाक के साथ राजा शब्द नहीं मिलता, अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उदाक किसी राजा का नाम था अथवा उस स्थान का जहां गुहा निर्माण हुआ था। आंध्रक के पश्चात क्रमशः पलिडक घोष और वज्रमित्र राजा हुए, परंतु इसके विषय में हमें कोई ज्ञान नहीं है। इसके पश्चात नवा सुंग नरेश भाग था। डॉक्टर भंडारकर आदि विद्वानों के मतानुसार इस राजा का समीका विदिशा के एक गरुण स्तंभ लेख में उल्लिखित महाराज भागभद्र से होना चाहिए। इस अभिलेख के अनुसार यूनानी नरेश एंटी ऑलकिट ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारतीय नरेश महाराज भागभद्र की राजसभा में भेजा था। यह राजदूत धर्म का अनुयायी था। इससे विष्णु भगवान के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए विदिशा में उपयुक्त गरुण स्तंभ स्थापित करवाया था। इस गरुण स्तंभ लेख में दम, त्याग और अप्रसाद का उल्लेख मिलता है। इन गुणों का उल्लेख ठीक इसी रूप में महाभारत में भी हुआ है। इससे अनुमान होता है कि यूनानी हेलियोडोरस ने न केवल भागवत धर्म का अनुयायी था वरन वह महाभारत में भी से भी परिचित था। अंतिम सुंग राजा देवभूति अथवा देवभूमि था। यह अत्यंत कामुक नरेश था। इसके अमात्य वसुदेव कण्व ने उसकी हत्या कर डाली। इस कथन की पुष्टि हर्षचरित से होती है। इस प्रकार सुंग राजवंश का अंत हो गया और उसके स्थान पर कड़व राजवंश की प्रतिष्ठा हुई। सुंग कालीन भारत स्मरण विचारधारा का विरोध। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, सुंग काल ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल था। बौद्ध धर्म के प्रचार ने जिस निवृत्ति मार्गों पर सहन किया दिया था वह ब्राह्मण की दृष्टि में राष्ट्र के लिए घातक था। अल्पायु युवाओं ने भावुकता के प्रवाह में प्रवज्ञा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। अनेक गृहस्थ अपने आश्रितों की जीविका का उचित प्रबंध किए बिना ही संसार त्याग कर रहे थे। स्त्रियों का भिक्षुणी वृत्ति ग्रहण करना समाज में एक वर्ग की दृष्टि में नितांत आपत्तिजनक था। राज्य की दृष्टि में संघ एक पावन संस्था बन गया था। उसके भिक्षु भिक्षुणी राजदंड की पहुँच के बाहर थे, अतः इस सुविधा का लाभ उठाकर बहुसंख्यक हत्यारे, ऋणी और अभियुक्त भी संघ में प्रविष्ट होकर राज्य के चंगुल से बच जाते थे। अतः ब्राह्मण व्यवस्थाकारों की दृष्टि में बौद्ध धर्म द्वारा प्रचारित श्रवण वित्तीय सर्वथा परिन्याज्य बन गई। यही कारण है कि सुंगकाल के महापंडित पतंजलि को हम यह घोषणा करते हुए देखते हैं कि ब्राह्मण विचारधारा और श्रवण विचारधारा में शाश्वत विरोध है। मनु ने भी वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों के समक्ष गृहस्थ आश्रम को सर्वोपरि महत्ता प्रदान की है। महाभारत के कुछ अंश में तत्कालीन श्रवण विचारधारा का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। शांति पर्व में भीम दृष्टि से कहते हैं कि मौन धारण करके केवल अपनी उदर पूर्ति करके धर्म का ढोंग रचकर मनुष्य अंधा पतित ही होता है। अकेला मनुष्य जिसे पुत्र पात्रों का पालन पोषण न करना ही, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों तथा पितरों के प्रति अपना उत्तरदायित्व न निभाना ही वही मन में सुख से रह सकता है। वनों में रहने वाले ये मृग पक्षी कोई भी स्वर्ग नहीं पाते। यदि संन्यास से कोई सिद्धि पा सके तो उस पर्वत और वृक्ष तुरंत ही सिद्ध प्राप्त कर ले। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुंग काल में श्रवण विचारधारा का घोर विरोध किया गया। अश्वमेध का पुनरुद्धार। अशोक के अहिंसा प्रचार ने ब्राह्मण यज्ञ को समाप्त कर दिया था। तब पुष्यमित्र सुंग ने सम्राट होते ही उनका फिर से उद्धार किया। अयोध्या अभिलेख से प्रकट होता है कि उसने स्वयं दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक यज्ञ का पौरोहित्य तो स्वयं महापंडित पतंजलि ने किया था। अश्वमेध की पुनस्थापना सुंग काल के ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा की सूचना देती है। ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा काल में फिर से ब्राह्मण वर्ण को अन्य वर्णों की अपेक्षा सर्वोपरि माना गया है। ब्राह्मण पुष्यमित्र ने अपने प्रज्ञा दुर्बल स्वामी की हत्या करके राजसिंहासन प्राप्त किया था। मनु इसके इस कार्य का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वे कहते हैं कि वेदविद ब्राह्मण सेनापतित्व, राजदंड और एकाधिपत्य का अधिकारी होता है। इसी के साथ वे कहते हैं कि जो राजा मोमवश असावधानी से अपने राष्ट्र को उत्पीड़ित करता है वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है और अपने बंधु बांधव सहित मारा जाता है। दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कि 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय की अपेक्षा अधिक आदरणीय है। इस प्रकार के अनेक कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि सुंग काल में ब्राह्मण वर्ण की प्रधानता दी गई है। राजपद की गरिमा। सुंग कालीन व्यवस्थाकारों ने राजपद को अभूतपूर्व गरिमा दी। राजा का निर्माण इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के अंशों से हुआ है। अराजकता का नाश करने के लिए प्रभु ने राजपद का निर्माण किया है। दंड ही संपूर्ण प्रजा का शासक और रक्षक है। महाभारत में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं। संस्कृत भाषा। ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार के साथ साथ संस्कृत भाषा की उन्नति होना स्वाभाविक था। प्रतीत होता है कि अनभ्यास के कारण जनता संस्कृत के नियमों को भूल रही थी। यही कारण है कि प्रसिद्ध व्याकरण पतंजलि ने पाणिनीयन की अष्टाध्यायी पर एक वृहत महाभाष्य लिखा और इस प्रकार संस्कृत भाषा के नियमों को पुनः प्रतिष्ठित किया। व्यूलर महोदय ने मनुस्मृति का रचनाकाल ईस्वीपूर्व 200 और 200 ईस्वी के बीच में रखा था, परंतु डॉक्टर जायसवाल इसे सुंगकाल की रचना मानते हैं। यह मत अधिक न्यायसंगत भी प्रतीत होता है। ब्राह्मण राज्य की स्थापना के साथ ही वर्णाश्रम धर्म के आधार पर ही समाज की नई व्यवस्था की गई है। इसका ज्ञान हम मनुस्मृति से प्राप्त होता है। महाभारत की रचना पहले ही हो गई थी, परंतु समय समय पर इसमें परिवर्तन होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि सुंग काल में भी महाभारत का नया संस्करण किया गया और उसमें समाज में उदीयमान नवीन विचारधाराओं का समावेश किया गया। कुछ विद्वान कालिदास को भी सुंग काल में रखते हैं। अपने मत की पुष्टि में ये निम्नलिखित प्रमाण देते हैं। पहला, जनश्रुति के अनुसार कालिदास विक्रम की राज्यसभा में थे, जिन्होंने 59 ईस्वी पूर्व एक संवत चलाया था। दूसरा, कालिदास और अश्व घोष की रचना में कहीं कहीं बड़ा साम्य मिलता है। अश्वघोष ईसा की प्रथम शताब्दी में हुए, अतः यदि हम कालिदास को उनके पूर्व नहीं मानते तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने अश्वघोष की नकल की, जो कि संस्कृत के महाकवि के लिए असंगत प्रतीत होती है। तीसरा, कालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र में सुंगवंश की घटनाओं का उल्लेख किया है, परंतु ये तीनों तर्क निर्बल हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, अतः कालिदास उसकी राजसभा में भी हो सकता था। कालिदास ने अश्वघोष से कुछ बात अवश्य ग्रहण की, परंतु उन्हें सदैव अधिक आकर्षक रूप में रखा है। रही सुंगवंश की घटनाओं की बात, तो पराक्रमी लेखक भली भांति अतीत की घटनाओं को अपनी रचनाओं का विषय बना सकता है। जो भी हो, अधिकांश विद्वान कालिदास को सुंगकालीन न मानकर गुप्तकालीन ही मानते हैं। कला। सुंग काल कला की दृष्टि से भी एक नूतन विकास काल है। इसके विषय में निम्नलिखित बात उल्लेखनीय है। पहला, राजकीय छत्रछाया में पनपने के कारण मौर्य काल उत्कृष्ट होते हुए भी जनता के मनोभावों और उसकी वस्तुस्थिति को वहन न कर सकी थी, परंतु सुंग काल में हम देखते हैं कि कला और सार्वजनिक जीवन के बीच का अंतर उत्तरोत्तर क्षीण होता चला गया है। सुंग कला में जनता के जीवन की झांकी है। दूसरा, सुंग कला का प्रमुख विषय धर्म नहीं जीवन है। इस काल में स्तूपों का निर्माण अवश्य हुआ, परंतु उन पर जो स्थापत्य कृतियां बनाई गई वे अधिकांशतः जनता के बौद्धिक, मानसिक एवं सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। तीसरा, अपने पूर्व जन्मों के रूपों में महात्मा बुद्ध साकार प्रदर्शित किए गए हैं, परंतु अपने ऐतिहासिक जीवन के रूप में महात्मा बुद्ध कभी भी शरीरतः नहीं दिखाए गए हैं। इस रूप में उनकी उपस्थिति प्रतीकों अर्थात स्तूप, धर्म चक्र, पदचिन्ह, छत्र आदि द्वारा प्रकट की गई है। चौथा, सुंग काल के प्रारंभिक चरण में स्थापत्य वानस्पतिक शैली है का है। प्रारंभ में अधिकांशता पत्र, पुष्प, पादप, लता का प्रयोग किया गया है। मनुष्य और पशु पक्षियों को निर्मित करने में भी वानस्पतिक शैली का प्रयोग किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि रिलीफ की कृतियां परस्पर विच्छिन्न, छिछली और सतह पर फैली हुई दिखाई देती हैं। परंतु सुंग काल के अंतिम चरण में हम ये दोष नहीं पाते। इस चरण की रिलीफ मूर्तियां संपत्त प्रसंग गहरी और उभड़ी होने के कारण अधिक स्वाभाविक है। कुछ विद्वानों ने इसे विदेशी कलाकारों का प्रभाव माना है, परंतु इसे स्वदेशी शैली के क्रमिक विकास का परिणाम मानना ही अधिक उपयुक्त है। पांचवा, मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु सुंग काल में इनके निर्माण में संपूर्णतः पाषाण का प्रयोग किया गया था। छठवां, मौर्य काल में विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वस्तुकला में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। चंद्रगुप्त का राज प्रासाद लकड़ी का था। सुंग काल में लकड़ी के स्थान पर पाषाण का प्रयोग हुआ, परंतु स्थान स्थान पर हम देखते हैं कि पाषाण का प्रयोग करते हुए भी सुंग कलाकारों ने उन अनेक विधियों और शैलियों का प्रयोग किया है जो लकड़ी के निर्माण कार्य में आवश्यक होती थी। बरहूत स्तूप सुंग काल में बरहूत बौद्ध गया और सांची कला के प्रमुख केंद्र थे। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सुंग काल में इसका आकार तो पहले जैसा ही रखा गया, परंतु उसके चारों ओर 60 फीट ऊंची पर परिवेष्टनी का निर्माण किया गया था। इसमें 4 तोरण द्वार स्थापित किए गए थे। परिवेष्टनी और तोरण द्वार बहुसंख्यक स्थापत्य कृतियों द्वारा अलंकृत किए गए थे। कनिंगम महोदय ने 1873 में बरहूत के इस स्तूप का पता लगाया था। उस समय यह स्तूप कुछ भाग अवशिष्ट थे। अब स्तूप तो नष्ट हो गया, परंतु उसकी परिवेष्टनी और तोरण द्वार कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित है। परिवेष्टनी के एक भाग पर सुगनम रजे लिखा है। इससे प्रकट होता है कि उसका निर्माण सुंग काल में ही हुआ था। बरहूत स्तूप अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी परिवेष्टनी और इसके तोरण द्वारों पर या तो यक्षिणी तथा अन्य अर्धदेवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या जातकों की कथाओं की। साधारणतया कथाओं के विषयों का उल्लेख कर दिया गया है, जिससे उन्हें समझने में सरलता होती है। बरहूत का स्थापत्य कला की दृष्टि में बहुत उच्च कोटि का नहीं है। रिलीफ की कृतियों में सदैव गहराई और उभार नहीं मिलता। कभी कभी समूह प्रदर्शन में भी मूर्तियां एक दूसरे से असंबद्ध दिखाई देती हैं। उनकी मुद्राएं भाव शून्य हैं, परंतु अनेक अभावों और त्रुटियों के होते हुए भी बरहूत की कला अपने वास्तविक अंकन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जनता के धार्मिक विचारों, वस्त्राभरणों और आचारों का उत्कनन बड़ी सहृदयता से किया गया है। प्रत्येक कथानक के प्रदर्शन में अत्यधिक विस्तार से काम लिया गया है। प्रत्येक वस्तु सांगोपांग प्रदर्शित की गई है। कभी कभी इन सांगोपांगता से कथानक प्रवाह में बाधा पड़ती है। बौद्ध गया का स्तूप। प्रारंभ में बौद्ध गया में एक स्तूप था, उसके चारों ओर एक परिवेष्टनी थी। इस परिवेष्टनी के अवशिष्ट भाग आज भी संरक्षित है। बौद्ध गया का स्थापत्य बरहूत की प्रारंभिकता और सांची की पराकाष्ठा के बीच में आता है। इसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि बरहूत की अपेक्षा बौद्ध गया की स्थापत्य मूर्तियों में गहराई और उभार अधिक है। अब उनकी आकृतियों में निर्जीव कठोरता के स्थान पर सजीव लचीलापन भी है। कथानकों में पहले जैसा अत्याधुनिक सांगोपांगता नहीं है। समूह में व्यक्ति कम है, अतः उनकी गति भी पहले से अधिक स्वच्छंद और निर्बाध है। सांची स्तूप। परंतु कला का उत्कृष्ट विकास सांची स्तूप में दिखाई देता है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों का वर्णन हम कर चुके हैं। सुंग काल के पूर्व के सभी स्तूप साधारण कोटि के होते थे। वे कच्ची ईंटों के बने होते थे। ये ईंट प्रायः 16x10x3 इंच की होती थी। स्तूप की बाहरी सतह के ऊपर मोटा प्लास्टर कर दिया जाता था और फिर उसके ऊपर से कोई रंग। स्तूप के ऊपर कभी कभी पत्थर की बनी हुई एक छत्रस्थी स्थापित की दी जाती थी। कभी कभी स्तूप तोरणों, पटाखों और आदि से भी अलंकृत किया जाता था। कभी कभी स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी बना दिया जाता था। इस प्रदक्षिणा पथ के बाहर लकड़ी की एक चार दीवारी बना दी जाती थी। सुंग काल के पूर्व के स्तूप लगभग 35 फीट ऊंचे और 70 फीट व्यास के हैं। परंतु सुंग काल में स्तूप निर्माण में कच्ची ईंट और लकड़ी के स्थान पर पत्थर का योग दिया गया। हम पहले कह चुके हैं कि सांची में स्तूप अशोक का स्तूप था। सुंग काल में इसका आकार बहुत बड़ा दिया गया। अब यह 54 फीट ऊंचा और 120 फीट के व्यास का हो गया। इसके चारों ओर पृथ्वी से 16 फीट ऊंचा एक चबूतरा भी बना दिया गया। इस चबूतरे पर जाने के लिए दक्षिण की ओर सीढ़ियां भी बनाई गईं। स्तूप के ऊपर एक वर्गाकार वेदिका स्थापित की गई। इस वेदिका के निर्माण में 9 फीट के स्तंभ एक दूसरे 2-2 फीट के फासले पर खड़े किए गए थे। इन स्तंभों को जोड़ते हुए 3-3 डंडे लगाए गए हैं। प्रत्येक डंडा 2 फीट चौड़ा है। दो डंडों के बीच में केवल 3 से 1/4 इंच का फासला है। इस विशाल वेदिका के भीतर एक आधार बनाया गया था और उस पर 6 छत्रस्थी खड़ा किया गया था। पर्सी ब्राउन महोदय का कथन है कि अपनी विशालता और गंभीरता के कारण यह वेदिका अत्यंत प्रभाव उत्पादक है। संपूर्ण स्तूप वेदिका हर्मिक और छत्रस्थी एकमात्र पत्थरों से बनाए गए थे। इस सांची स्तूप में 4 तोरण हैं। प्रत्येक तोरण इन स्तंभों के ऊपर 3-3 डंडे लगाए गए हैं। अंततो गत्वा प्रत्येक तोरण पृथ्वी से 34 फीट ऊंचा हो गया है। प्रमुख स्तूप का निर्माण इसी पूर्व 2 शताब्दी के है। मूल स्तूप के चारों ओर अन्य छोटे स्तूप और विहार भी बनाए गए थे। विद्वानों का कथन है कि सांची के स्तूप में पाषाण खंडों को जोड़ने का तरीका वही है जो लकड़ी जोड़ने का होता है। संभवतः लकड़ी के निर्माण प्रणाली का प्रयोग पाषाण के ऊपर किया गया है। अतः वास्तुकला की दृष्टि में सांची स्तूप उच्च कोटि का नहीं है, परंतु उसके ऊपर स्थापत्य की जो मूर्तियां स्थापित की गई हैं वे उत्कृष्ट कोटि की हैं। तोरणों के ऊपर मूर्तियों द्वारा जो अलंकरण किया गया है वह अति सुंदर है। निर्मित पशुओं, पक्षियों, पादपों, वामनों या यक्षिणियों आदि की मूर्तियां कलाकारों के प्रकृति प्रेम और अभिन्न प्रेम की सूचना देती हैं। सांची का स्थापत संप्रदाय अथवा धार्मिक नहीं है, इसमें बौद्ध धर्म के कथानक अवश्य मिलते हैं परंतु वे गौण हैं। इनकी सहायता से स्थापत्यकार ने मानवीय पार्श्विक एवं वानस्पतिक जगत के विविध चित्र उपस्थित किए हैं। वह नाम व नागरी जीवन की विभूति को अंकित करने में उतना ही निपुण है जितना ग्राम्य जीवन की सरलता को। मनुष्यों की आकृतियों में धन गात्रता पर जोर दिया गया है परंतु उनके वस्त्राभरणों से उनकी कठोरता बहुत कुछ नर्म हो जाती है। बरहूत के वस्त्राभरण कठोर और अस्वाभाविक लगते हैं, वे शरीर से चिपटे से दिखाई देते हैं परंतु ये दो सांची में नहीं है। चुन्नट और सिलवटों के प्रयोग से वस्त्रों और शरीर से उभार दिया गया है। नारी की मूर्तियों की संरचना बड़ी सुंदर और सजीव है। सांची स्तूप के स्थापत्य में हम एकांकी विच्छिन्न प्रसंग मूर्तियों के स्थान पर संबंध प्रसंग मूर्ति समूह पाते हैं। वहाँ अनेक मूर्तियों के द्वारा कोई कथानक कहा जाता है अथवा कोई घटना प्रदर्शित की जाती है। रिलीफ स्थापत्य में मूर्तियाँ पहले की अपेक्षा अधिक बड़ी और उभरी हुई है। स्थापत्य के ऊर्ध्वाकार और क्षैतिज योजना के कारण मूर्तियाँ विभिन्न दशाओं और स्थितियों में दिखाई देती है। लाइट और शेड की योजना के आवश्यकता अनुसार मूर्तियाँ विशेष अथवा अंग विशेष को उभार दिया है। वैशम मोदन ने स्तूप कला की इस प्रकार प्रशंसा की है। सांची के चारों तोरण किसी एक समय में निर्मित नहीं हुए थे। इतना निश्चित है कि प्रथम और अंतिम तोरण के निर्माण कालों के बीच में ही अधिक अंतर नहीं था। सुंगकालीन कला के अन्य उदाहरण। सुंगकाल की कला में कुछ अन्य उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं। इनमें निम्नलिखित तो विशेष रूप से उल्लिखित है। पहला विदिशा का गरुड़ ध्वज, दूसरा भाजा का चैत्य एवं विहार, तीसरा जनता का नवा चैत्य मंदिर, चौथा नासिक तथा काले के चैत्य, पांचवा मथुरा की अनेक यक्षी मूर्तियां। कर्म। विष्णु पुराण का उल्लेख है कि सुंगवंश का अंतिम राजा देवभूति अपनी मंत्री वशु देव द्वारा मारा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस हत्या के पीछे भी एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था। अपने कुकर्मों के कारण देवभूति संभवतः प्रजा और राजा अधिकारियों के लिए असाध्य हो गया था। विष्णु पुराण के देवभूति को व्यसनी बताता है। उसकी पुष्टि हर्षचरित से भी होती है। इसमें लिखा है कि अमात्य वसुदेव ने अतिकामी सुंगराज देवभूति की हत्या कर डाली। वसुदेव ने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जो इतिहास में कणवंश के नाम से प्रख्यात है। यह वंश ब्राह्मण वंश था। इसने संभवतः 72 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। पुराणों के अनुसार कणवंश के राजाओं के नाम और उनके काल निम्न प्रकार है। पहला वसुदेव 9 वर्ष, दूसरा भूमिमित्र 14 वर्ष, तीसरा नारायण 12 वर्ष और चौथा सुशर्मा 10 वर्ष। कुल मिला के इनका शासन काल 45 वर्ष है। पुराणों का कथन है कि कर्णवंश के राजा धर्मानुकूल शासन करेंगे। इससे अनुमान होता है कि सुंगवंश के ब्राह्मण पुनरुद्धार की नीति का कर्णवंश ने भी अनुसरण किया, परंतु हम कर्णवंश की किसी भी महत्वपूर्ण घटना से परिचित नहीं है। सातवाहन। वायु पुराण का कथन है कि आंध्र जाति सिंधु कानवाएं सुशर्मा एवं सुंगों की अवशिष्ट शक्ति को नष्ट कर राज्य प्राप्त करेगा। इसे प्रकट होता है कि कर्णवंश का नाश आंध्रवंश के द्वारा हुआ। पुराणों के पूर्वोल्लिखित उद्धरण से प्रकट होता है कि राज्य प्राप्त करने के लिए आंध्रवंश के संस्थापक को कर्ण और सुंग दोनों वंशों की शक्ति का नाश करना पड़ा था। इसे प्रकट होता है कि कर्णवंश के शासन काल में भी सुंग वंश किसी न किसी रूप में राज्य करता रहा था। यह रूप क्या हो सकता है? सर और जी भंडारकर का मत है कि सुंगवंश से सत्ता छीनने के पश्चात भी कर्णवंश ने उसका पूर्ण रूप से विनाश नहीं किया और पेशवा की भांति उसे शासन करने दिया, परंतु अधिकांश विद्वान कर्ण शासन काल में सुंगवंश की स्वतंत्र सत्ता का को स्वीकार नहीं करते। उनका यह मत है कि सर्वोच्चतम सत्ता कर्णों के साथ में ही रही। सुंग राजा जाता संभवतः विदिशा के छोटे से प्रदेश में कर्ण राजाओं की अनुमति से राजा की उपाधि मात्र धारण किए हुए अर्ध स्वतंत्र रूप में शासन कर रहे थे। आंध्र संस्थापक ने अपनी संपूर्ण सत्ता स्थापित करने के लिए कर्णों की संपूर्ण शक्ति और सुंगों की अवशिष्ट शक्ति दोनों का विनाश कर देना आवश्यक समझा। आंध्र अथवा सातवाहन। इस नवीन राजवंश को पुराण आंध्र जाति अथवा आंध्रभृत्य मानते हैं, परंतु इस वंश के लेखों में कहीं पर भी इस नाम का प्रयोग नहीं हुआ। इसके राजा सदैव अपने को सातवाहन कहते हैं। साहित्य में कहीं कहीं पर इस वंश के लिए शालीवाहन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः प्रश्न यह होता है कि नामों के इस विरोध का क्या कारण हो सकता है। आंध्र जाति का अर्थ हुआ अनार्य। प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ दक्षिणी भारतवर्ष में गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच के प्रदेश को आंध्र जाति का निवास स्थान बताते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार यह प्रदेश आर्य संस्कृति के बाहर था। आंध्रों की गणना पुंड्र सबर और पुलिंद आदि अनार्यों के साथ हुई है। अतः यदि हम नवीन वंश को आंध्र वंश मान ले तो वह आनार्य वंश सिद्ध होगा, परंतु जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे नवीन वंश आर्य वंश था और ब्राह्मण वंश भी। फिर आखिर पुराणों में इस ब्राह्मण वंश को आंध्र जाति क्यों कहा? इसका एक विशेष कारण है, यह नवीन वंश महाराष्ट्र में राज्य करता था, परंतु कालांतर में शकों ने इस राजवंश को पराजित करके महाराष्ट्र से खदेड़ दिया। महाराष्ट्र को छोड़कर यह पराजित राजवंश गोदावरी और कृष्णा के बीच में आंध्र देश में आकर बस गया। आंध्र देश में रहने के कारण ही यह वंश आंध्र कहलाया। अतः आंध्र नाम प्रादेशिक संज्ञा है, जाति संज्ञा नहीं। बहुदेशी नामक ग्रंथ में आंध्री और सातवाहनी नामक दो पृथक पृथक रागनियों का उल्लेख है। इससे भी यही अनुमान होता है कि आंध्र और सातवाहन दो पृथक पृथक जातियां थी। जाति सातवाहनों की जाति में विषय के विषय में बड़ा मतभेद है। इस विषय पर प्रमुखता तीन मत प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला सातवाहन अनार्य थे, दूसरा सातवाहन अब्राह्मण थे, तीसरा सातवाहन ब्राह्मण थे। या हम इन्हीं तीनों मतों की समीक्षा करेंगे। पहला, क्या सातवाहन अनार्य थे? सातवाहनों को अनार्य मानने वाले विद्वान अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहला, पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति कहा गया है और आते ब्राह्मण में आंध्र अनार्य बताए गए हैं। दूसरा, अनेक सातवाहन राजाओं के नाम अनार्य प्रतीत होते हैं, यथा सीमुखाल और पुलुमावी। तीसरा, अनेक सातवाहन नरेशों के नाम उनकी माताओं के नाम पे रखे गए थे, यथा गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र। यह मातृप्रधान अनार्य समाज की विशेषता है। चौथा, सातवाहनों ने अनार्य शकों से भी विवाह संबंध स्थापित किया, परंतु ये तर्क निर्बल है। पहला, पहले कहा जा चुका है कि सातवाहन जाति से आंध्र नहीं थे, वे आंध्र प्रदेश में बसने के कारण आंध्र कहलाए। दूसरा, यह सर्वविदित है कि दक्षिणी भारत का आर्यीकरण देर को और धीरे धीरे हुआ। यहाँ आर्यों के पहुँचने के बाद भी दीर्घकाल तक अनार्य संस्कृति के अनेक अंश प्रबल रहे। अनार्य संस्कृति के प्रभाव में ही कुछ आर्य राजाओं के नाम अनार्य से प्रतीत होते हैं। तीसरा, सातवाहन समाज मातृप्रधान न था, परंतु उसमें स्त्रियों का स्थान बड़ा सम्मानपूर्ण था। कुछ स्त्रियां अपनी योग्यता और विद्वता के लिए प्रख्यात थी। संभवतः उनकी इसी प्रसिद्धि के कारण उनके पुत्रों के नाम उनके नामों पर रखे गए थे। चौथा, अंतर जाति विवाह तो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में होते रहे। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी राजकुमारी के साथ विवाह किया था, परंतु एकमात्र इसी कारण वह अनार्य नहीं कहा जाता। इसी प्रकार यदि किसी सातवाहन नरेश ने शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री के साथ विवाह किया हो तो उससे उसका अनार्यत्व प्रकट नहीं होता। दूसरा, क्या सातवाहन अब्राह्मण थे? कुछ विद्वानों का मत है कि सातवाहन आर्य तो थे, परंतु वे ब्राह्मण नहीं थे। उन्हें ब्राह्मणेतर जाति का सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। पहला, कुछ सातवाहन राजाओं के नामों में गौतम और वशिष्ठ लगा हुआ है, ये ब्राह्मण गोत्र है। परंतु डॉक्टर डी आर भंडारकर का मत है कि सूत्रों के अनुसार यजमान को यदि अपने गोत्र का ज्ञान न हो तो वे अपने ब्राह्मण पुरोहित का गोत्र भी धारण कर सकता था। अतः ब्राह्मण गोत्र का धारण करने वाला व्यक्ति मूलतः ब्राह्मण भी हो सकता है। यही बात संभवतः सातवाहनों के विषय में भी रही हो। दूसरा, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की एकम वाहन कहा गया है, परंतु डॉक्टर भंडारकर के मतानुसार इस शब्द का अर्थ एक ब्राह्मण है। इसी प्रकार भगवान लाल इंद्र जी ने एक ब्राह्मण का अर्थ एकमात्र साधु लगाया है, अतः इस शब्द से ब्राह्मण जातीयता सिद्ध नहीं होती। दूसरा, एक नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री को राजसी वधु कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि वह ब्राह्मण न थी, अन्यथा उसे ब्रह्मर्षि वधु कहा जाता। चौथा, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की तुलना राम, केशव, अर्जुन और भीम से की गई है। ये सब क्षत्रिय थे, अतः गौतमी पुत्र भी क्षत्रिय रहा होगा। परंतु इन सभी तर्कों का खंडन बड़ी सरलता से किया जा सकता है। पहला, याज्ञिक कार्यों के लिए सूत्रों ने अनुमति अवश्य दे रखा था कि यदि यजमान को अपना गोत्र ज्ञात न हो तो वे अपने ब्राह्मण पुरोहित का गोत्र धारण कर सकता था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस सुविधा का प्रयोग एकमात्र क्षत्रियों ने ही किया था, वैश्यों ने नहीं। यह स्पष्ट है कि सातवाहन क्षत्रिय न थे, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में खतीय देवान मदनश्य कहा गया है, अतः सातवाहन ब्राह्मण ही होंगे। दूसरा, एक ब्राह्मण का सामान्य अर्थ ब्राह्मण जाति का ही है, अन्य अर्थ खींचातानी के परिणाम है। तीसरा, कहीं कहीं ब्राह्मणों को भी राजश्री कहा गया है, यथा ब्राह्मणों पुराणों में ब्राह्मण दगीची को भी। चौथा, तुलना का आधार जाति नहीं वरन वीरता था। तीसरा, क्या सातवाहन ब्राह्मण थे? सेनार, ब्यूलर आदि अधिकांश विद्वानों का मत है कि सातवाहन ब्राह्मण थे। इस मत की पुष्टि में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, नासिक अभिलेख में स्पष्ट रूप से गौतमी पुत्र सातकर्णी को एकम बहन कहा गया है, इससे प्रकट होता है कि वह ब्राह्मण था। दूसरावसी अभिलेख में उसे खतीय देमान मदनस्य कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वह क्षत्रिय नहीं था, उसके वैश्य शूद्र होने का प्रश्न ही नहीं, अतः वह ब्राह्मण होगा। तीसरा, गौतमीपुत्र और वशिष्ठीपुत्र नाम से प्रकट होता है कि ये ब्राह्मण गोत्रों गौतम और वशिष्ठ पर रखे गए थे, अतः उनके धारणकर्ता ब्राह्मण होंगे। चौथा, नासिक अभिलेख में भी गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगम माना निलयश्य और विनिवर्ती चातुर्ण संकरश्य कहा गया है। गौतमीपुत्र की ये विशेषताएं पुष्यमित सुंग का स्मरण दिलाती हैं। मनुस्मृति परोक्ष रूप से उसे वेद शास्त्रविद कहती है। पुष्यमित सुंग ने भी वर्ण व्यवस्था स्थापित करने की चेष्टा की थी। इस आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि पुष्यमित सुंग की भांति गौतमीपुत्र सातकर्णी भी ब्राह्मण था और उसके ब्राह्मण व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न किया था। सातवाहनों का मूल निवास स्थान, सातवाहनों के मूल निवास स्थान के प्रश्न पर भी मतैक्य नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। इनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। पहला, आंध्रदेश, रैप्शन, वार्नेट, जसवाल और प्रभाकर शास्त्री आदि विद्वानों ने आंध्रदेश को सातवाहनों का मूल स्थान बताया है, परंतु इस मत के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला, 24वें सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के पूर्व किसी सातवाहन राजा के आंध्र प्रदेश पर शासन करने के प्रमाण नहीं मिलते। वशिष्ठी पुत्र के पूर्व आंध्र प्रदेश में सातवाहनों का कोई भी अभिलेख अथवा सिक्का नहीं मिलता। दूसरा, आंध्र प्रदेश में स्थित अमरावती स्तूप पर अनेक अभिलेख मिलते हैं, परंतु उनमें से कहीं भी सातवाहनों का नाम नहीं मिलता। तीसरा, सातवाहनों को आंध्र इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वे आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे, वे इस प्रदेश बहुत बाद को पहुंचे। दूसरा, बेलारी डॉक्टर शंकर के मतानुसार सातवाहन मद्रास राज्य के बेलारी जिले के मूल निवासी थे। वहां प्राप्त माइकडोनी और हिरहडगल्ली ताम्रपत्रों में इस प्रदेश को क्रमशः सातवाहन निहार और सातहनी रट्ठ के नाम से पुकारा गया है, परंतु यदि वे बेलौरी में ही सातवाहनों का उदय हुआ होता तो वहां के प्रारंभिक लेख और सिक्के क्यों नहीं मिलते। तीसरा, बरार, प्रोफेसर मीराशी का मत है कि सातवाहनों का मूल स्थान बरार था। यही कारण है कि बरार के अकोला जिले में तरहला नामक स्थान पर सातवाहनों की मुद्राएं मिली हैं, परंतु इस मत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अकोला मुद्रा भांड में 23वें सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी के पूर्व की कोई मुद्रा नहीं मिलती। चौथा, मध्य देश के दक्षिण में विनय पिटक में सेतकन्नीक नामक एक नगर का उल्लेख है। यह मध्य देश के दक्षिण में स्थित था। इसी आधार पर डॉक्टर राय चौधरी ने मध्य देश के दक्षिणी भाग को सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना है, परंतु एकमात्र इसी तर्क के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष निकालना न्याय संगत नहीं है। पांचवा, महाराष्ट्र, अधिकांश विद्वान महाराष्ट्र को सातवाहनों का उदय स्थान होने का श्रेय देते हैं। उनके तर्क इस प्रकार हैं। पहला, सातवाहन नरेशों की अधिकांश मुद्राएं और उनके अभिलेख महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। दूसरा, सातवाहन काल की नाशिक, कार्ले, अभाजा आदि की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। तीसरा, सात की मुद्राएं मालव शैली की हैं, तब महाराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत में निर्मित हुई होंगी। चौथा, सातवाहन नरेशों ने अपने अभिलेखों में महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रयोग किया है। पांचवा, नानाघाट अभिलेख की सूचना है कि सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका महाराठियों की राजकुमारी थी। महाराठी पश्चिमी भारत के निवासी थे, अतः सातवाहन उनके पड़ोसी होंगे। छठवा, हाथी गुम्फा अभिलेख का कथन है कि कलिंग नरेश खारवेल ने पश्चिम की ओर आक्रमण करके सातवाहन नरेश सातकर्णी को परास्त किया था। यह संभवतः पश्चिम में स्थित महाराष्ट्र की ओर संकेत है। सातवा, तेलंगाना कुछ समय पूर्व हैदराबाद तथा उसके समीप स्थित कोडापुर नामक स्थान में सातवाहनों की तर्म मुद्राएं मिली हैं। इस आधार पर यह भी अनुमान किया जाता है कि सातवाहन तेलंगाना के मूल निवासी होंगे, वहीं से महाराष्ट्र गए होंगे। सातवाहनों का उत्तरी भारत पर राज्य था। डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर डांडेकर आदि कुछ विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है कि सातवाहनों का उत्तरी भारत के कुछ प्रदेश पर भी अधिकार था। उनके मत के पक्ष में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। पहला, पुराणों में कहा गया है कि आंध्र जाति सिंधु की या वसुंधरा प्राप्त करेगा। यहाँ वसुंधरा का अर्थ मगध है। दूसरा, डॉक्टर जायसवाल ने नालंदा में एक सातवाहन मुद्रा प्राप्त की है। इस आधार पर भी वे सातवाहनी को मगध का अधिपति मानते हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश में प्रयाग से 7 मील की दूरी पर इस भीटा नामक स्थान पर एक अन्य सातवाहन मुद्रा प्राप्त हुई है। उसके आधार पर डॉक्टर डांडेकर उत्तर प्रदेश को सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत मानते हैं, परंतु इन तीनों तर्कों का खंडन किया जा सकता है पहला, इसका कोई अकाट्य प्रमाण नहीं है कि वसुंधरा का अर्थ मगध है, इसका तात्पर्य विदिशा अथवा महाराष्ट्र से भी हो सकता है। दूसरा, नालंदा की मुद्रा यात्री द्वारा वहां पहुंच सकती थी। तीसरा, यही बात भीटा की मुद्रा के विषय में भी कही जा सकती है। जो भी हो, एक दो मुद्राओं के आधार पर इतना बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मगध और उत्तर प्रदेश पर सातवाहनों का अधिकार था। यही नहीं, कुछ अन्य आधारों से भी प्रकट होता है कि उत्तरी भारत पर सातवाहनों का आधिपत्य न था। पहला, सातवाहनों के किसी भी अभिलेख में उत्तरी भारत का उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा, सातवाहन कालीनाती गुम्फा अभिलेख से भी यह प्रकट नहीं होता कि उत्तरी भारत सातवाहनों के अधीन था। तीसरा, सातवाहनों के अभिलेख और सिक्के उत्तरी भारत में नहीं मिले हैं। सातवाहन वंश की दो शाखाएं, वायु पुराण के अनुसार सातवाहन वंश में 19 राजा हुए और उन्होंने लगभग 3 शताब्दी तक राज्य किया। इसके विरुद्ध मत्स्य पुराण के 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहन वंश की दो शाखाएं थीं, एक मूल शाखा और दूसरी उप शाखा। मूल शाखा में 19 राजा हुए और जिन्होंने लगभग 3 शताब्दी तक राज किया, परंतु मत्स्य पुराण की परंपरा में मूल शाखा के राजाओं के अतिरिक्त उप शाखा के राजाओं और उनके कालों को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए राजाओं की संख्या 30 और उसका शासनकाल 4 शताब्दी हो गया है। काव्य मीमांसा और कुछ अभिलेख कुंतल के सातवाहनों का उल्लेख करते हैं। संभवतः यह उप शाखा के राजा थे जिनका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, परंतु वायु पुराण में नहीं। सातवाहनों का उदयकाल, स्मित और रैप्सन महोदय सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक का उदयकाल ईसा पूर्व 3 शताब्दी मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। पहला, सुंग वंश की स्थापना 184 के लगभग हुई थी। इस वंश ने 112 वर्ष तक राज्य किया। अतः सुंग वंश का पतन और कर्ण वंश का उदय 72 के लगभग हुआ। कर्ण वंश ने 45 वर्ष तक राज्य किया। कर्ण वंश के विनाश के पश्चात सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 27 हुई। दूसरा, नानाघाट अभिलेख सीमुक की पुत्र वधु का उल्लेख करता है। चंदा महोदय के अनुसार यह अभिलेख की लिपि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है, इसलिए सीमुक का काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में ही ठहरता है। तीसरा, हाथी गुम्फा अभिलेख का कथन है कि खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी को पराजित किया था और सीमुक दोनों काल एक दूसरे के बहुत निकट था। हाथी गुम्फा अभिलेख ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण का है, अतः सीमुक का काल भी ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में ही रहा होगा। उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर सातवाहन वंश का उदयकाल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी ही प्रतीत होता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुक, पुराणों में संस्थापक का नाम सिंधुक, शिशुक और शिप्रक भी मिलता है। इसे भृत भी कहा गया है। अतः अनुमान होता है कि स्वतंत्र राजा होने से पूर्व यह सामंत शासक रहा होगा। इसके शासनकाल की तिथियां अनिश्चित हैं। डॉक्टर राय चौधरी इसे ईस्वी पूर्व 60 और ईस्वी पूर्व 37 के बीच में रखते हैं। कृष्ण, पुराणों के अनुसार कृष्ण सीमुक का भाई और उत्तराधिकारी था। डॉक्टर दिनेश चंद सरकार का मत है कि कृष्ण सीमुक का पुत्र था। एक नासिक गुहा लेख में एक राजा कन्ह का उल्लेख है। इस कन्ह का समीकरण कृष्ण से किया गया है। इसके समय में नासिक के एक समण महामात्र ने एक गुफा निर्माण कराया था जिससे प्रकट होता है कि कृष्ण का नासिक पर अधिकार था। सातकर्णी, सातवाहन वंश का सर्वप्रथम पराक्रमी राजा सातकर्णी था। इसके शासनकाल के अनेक साक्ष्य मिले हैं। पुराण इसे कृष्ण का पुत्र कहते हैं, परंतु यह निश्चित प्रतीत नहीं होता है। बहुत संभव है कि वशिमुख का पुत्र रहा हो, क्योंकि एक नानाघाट अभिलेख में उसे सीमुक सातवाहनस्य वंश मधनस्य कहा गया है। इसमें सीमुक का तो नाम है परंतु कृष्ण का नहीं। प्राचीन परंपरा के पुत्रों के नाम के साथ ही पिता के नाम भी उल्लेखित कर दिए जाते थे। सातकर्णी के इतिहास पर निम्नलिखित साक्ष्य प्रकाश डालते हैं। पहला, नागानिका का नानाघाट अभिलेख। नागानिका सातकर्णी की रानी थी या अंगी वंश की थी। एक अंगी वंश के राजा अपने को मारथी कहते थे। इससे प्रकट होता है कि यह वंश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली था। अतः इसे वैवाहिक संबंध ने सातकर्णी को अपनी शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण सहायता दी होगी। यह अभिलेख सातकर्णी की सफलता के ऊपर भी प्रकाश डालता है। इसमें सातकर्णी को वीर सूर और अपतिहस्त दक्षिणापथपति कहा गया है। इस शब्दों से संभवतः दक्षिणापथ में सातकर्ण की कुछ विजयों का संकेत मिलता है। प्रथम अश्वमेध यज्ञ का वर्णन अभिलेख के टूट जाने से विलुप्त हो गया है, परंतु द्वितीय यज्ञ का वर्णन अब भी विद्यमान है, जिससे प्रकट होता है कि इस अवसर पर सातकर्णी ने बहुसंख्यक गांवों, घोड़ों, हाथियों, तौन और वस्तुओं का दान दिया था। डॉक्टर दिनेश चंद्र का मत है कि यह यज्ञ संभवतः नागानिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात किए थे, परंतु यह मत असंगत प्रतीत होता है। अभिलेख में राय शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। इससे प्रकट होता है कि यह यज्ञ राजा सातकर्णी के जीवन काल में ही हुए थे। दूसरा, सांची अभिलेख। इस अभिलेख में एक राजा सातकर्णी का वर्णन है। मार्शल महोदय का मत है कि यह राजा सातवाहन वंश का सातकर्णी नहीं हो सकता। मार्शल महोदय का विश्वास था कि सातकर्णी खारवेल का समकालीन था और दोनों ईशापुर दूसरी शताब्दी में हुए थे। अतः वे कहते हैं कि यदि हम सांची अभिलेख के राजा सातकर्णी को सातवाहन वंश का सातकर्णी मान ले तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ईशापुर द्वितीय शताब्दी में सांची के ऊपर सातवाहनों का अधिकार था, परंतु हम यह जानते हैं कि उस समय सांची के ऊपर सातवाहनों का नहीं वरन सुंगों का अधिकार था। परंतु मार्शल महोदय की सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने खारवेल को ईशापुर दूसरी शताब्दी में माना है, जबकि वह ईशापुर प्रथम शताब्दी का राजा था। अतः सांची अभिलेख के राजा सातकर्णी को उसी का नाम सातवाहन माना अनुचित नहीं है। इस प्रकार सांची अभिलेख से प्रकट होता है कि पूर्वी मालवा के ऊपर सातकर्णी का अधिकार था। श्री एल एन घोष का यह मत है कि यह प्रदेश स्वयं सातकर्णी ने जीता था अनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रदेश पहले से ही कर्णों के अधीन रहा होगा और सातवाहन वंश के प्रथम राजाओं सिमुक और कृष्ण ने सातकर्णी के पहले ही उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा। हाँ, यह संभव है कि सातकर्णी ने महारथियों की सहायता से पश्चिमी मालवा के ऊपर भी अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया हो। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सातकर्णी ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी। तीसरा, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने शांति सातकर्णी को पराजित किया था। हाथी गुम्फा नानाघाट अभिलेखों की लिपि समकालीन है, अतः खारवेल द्वारा पराजित सातकर्णी सातवाहन वंश का सातकर्णी ही प्रतीत होता है। चौथा, पेरिप्लस में एल्डर सारागोनस का उल्लेख है। विद्वान इसका समीकरण सातकर्णी से करते हैं। पांचवा, वीर चरित नामक एक बौद्ध ग्रंथ में प्रतिष्ठान के शासक सातकर्णी का वर्णन है। यह सातकर्णी शक्ति कुमार का पिता था। हम जानते हैं कि सातवाहन वंश के सातकर्णी का पुत्र का नाम सुक्तिश्री था। अतः दोनों राजा एक ही प्रतीत होते हैं। छठवा, कुछ मुद्राओं पर श्री सात का नाम मिलता है। रैप्सन महोदय ने श्री सात का समीकरण सातकर्णी के साथ किया। सातकर्णी का राज्य विस्तार तथा महत्व। इस प्रकार सातकर्णी ने एक विशाल राज्य की स्थापना की, जिसमें महाराष्ट्र का अधिकांश भाग उत्तरी कोकण और मालवा सम्मिलित थे। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातकर्णी ही प्रथम नरेश था जिसने दक्षिणी भारत में सातवाहनों की प्रभु सत्ता की स्थापना की। निर्बल उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम अपने को दो अल्पवयस्क पुत्रों शक्तिश्री और वेदश्री को छोड़कर मरा था, इसलिए पुत्रों के अल्पवयस्कता काल में उनकी माता नागनिका ने संरक्षिका के रूप में शासन भार संभाला। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहनों का एक शताब्दी का काल अवनति काल था। इस बीच में उसमें कोई भी ऐसा शक्तिशाली और योग्य राजा ना हुआ जो उनके राज्य को अक्षय रख सकता। पुराणों में निर्बल शासकों की सूची मिलती है, परंतु यह कहना कठिन है कि इनमें कौन सा शासक सातवाहनों की मूल शाखा का था और कौन सा उनकी उपशाखाओं का। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पौराणिक सूची के कुंतल सातकर्णी और हाल सातवाहनों की उपशाखाओं के नरेश थे। शक सातवाहन संघर्ष, शकों का उदय, सातकर्णी के निर्बल उत्तराधिकारियों को एक नवीन खतरे का सामना करना पड़ा। यह खतरा शकों के उदय से उत्पन्न हुआ। यहीं से शक सातवाहन संघर्ष का श्री गणेश होता है, जो दीर्घकाल तक चलता रहा। इसमें कभी शकों की विजय हुई और कभी सातवाहनों की। पेरिप्लस का लेखक मेम्बेरस नामक एक राजा का उल्लेख करता है, जिसने भड़ोच, गुजरात, काठियावाड़ और राजपुताना के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। पेरिप्लस का यह भी कथन है कि इस समय कल्याण का बंदरगाह नितांत आरक्षित था और यहां आने वाले यूनानी जहाजों को पकड़ लिया जाता था तथा उन्हें भड़ोच ले जाया जाता था। अभाग्यवश मेम्बेरस नामक राजा का उल्लेख किसी अन्य साक्ष्य में नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि मेम्बेरस के उत्तराधिकारी अधिक समय तक पश्चिमी प्रदेश पर अधिकार न रख सके। स्वर्गीय छहरात नामक एक अन्य शक वंश ने इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कुछ विद्वानों के मतानुसार छहरात कुषाणों के सामंत थे। उपलब्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि इसे नए वंश के उदय से शक सातवाहन संघर्ष अधिक तीव्र हो गया। अभिलेखों से प्रकट होता है कि इस वंश के सर्वप्रथम राजा भूमक का अधिकार पूना प्रदेश, उत्तरी कोकण और राजपुताना एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग पर था। भूमक का उत्तराधिकारी नहयान सबसे अधिक पराक्रमी छहरात नरेश था। उसके शासनकाल में सातवाहनों को और भी अधिक दुर्दिन देखने पड़े। उसने महाराष्ट्र, राजपुताना के कुछ भाग, अपरांत गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर अधिकार कर लिया। इनमें से कुछ प्रदेश पहले सातवाहन राज्य में थे। सातवाहन वंश का पुनरुद्धार, गौतमी पुत्र सातकर्णी। परंतु कुछ काल पश्चात सातवाहन वंश में एक महा पराक्रमी नरेश का उदय हुआ, जिसने शकों को परास्त करके अपने वंश का पुनरुद्धार किया। यह था गौतमी पुत्र गौतमी कर्णी। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। वह सातवाहन वंश का सबसे बड़ा और सबसे पराक्रमी राजा था। उसने अपने वंश प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के नाशिक अभिलेख में उसकी सफलताओं का वर्णन मिलता है। इस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला कहा गया है। उपयुक्त नाशिक अभिलेख के अन्य अंश भी गौतमी पुत्र सातकर्णी के पराक्रम को सिद्ध करते हैं। उदाहरणार्थ, पहला सर्वराज लोकमंडल प्रतिगहित शासनस्य, दूसरा सीमुद्र तोय पीत वाहनस्य, तीसरा अपराजित विजय पताक, चौथा अनेक समरा विजय शत्रु संघर्ष। उसके साम्राज्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रदेश थे यह भी उपयुक्त नाशिक अभिलेख से स्पष्ट हो जाता है। ये प्रदेश थे, पहला अशिक गोदावरी और कृष्णा के मध्य का प्रदेश, दूसरा अश्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश, तीसरा मूलक पठान के चतुर्दिक प्रदेश, चौथा सुराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़, पांचवा कुकुर उत्तरी काठियावाड़, छठवा प्रांत बम्बई प्रांत का उत्तरी प्रदेश, सातवा अनूप नर्मदा नदी पर महिष्मती प्रदेश, आठवा विदर्भ बरार, नौवा आकर पूर्वी मालवा, दसवा अवंती पश्चिमी मालवा। नाशिक के दो अभिलेखों से स्पष्ट हो जाता है कि उसने छैरात वंश को पराजित करके फिर अपने वंश का राज स्थापित कर लिया था। जोगल थम्बी मुद्रा भाण से भी इस कथन की पुष्टि होती है। इस मांडे में ऐसी मुद्राएं हैं जिन पर महपान और गौतमी पुत्र दोनों के नाम अंकित हैं। इससे प्रकट होता है कि महपान को पराजित करने के पश्चात उसने उसकी मुद्राओं पर अपना नाम अंकित करने के पश्चात उन्हें फिर से प्रसारित किया था। कुछ विद्वान यह नहीं मानते कि महपान और गौतमी पुत्र सातकर्णी समकालीन थे और द्वितीय ने प्रथम को पराजित किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी की तिथियां, गौतमी पुत्र और उसके उत्तराधिकारियों की तिथियां उनके शासनकाल की तिथियां हैं। शकनी सुदनश शब्द का प्रयोग गौतमी पुत्र के लिए किया गया है। इस आधार पर कुछ विद्वानों ने गौतमी पुत्र को शक संवत का संस्थापक माना है। ये विद्वान गौतमी पुत्र को ही विक्रमादित्य मानते हैं, परंतु अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका तर्क है कि भारतीय साहित्य उज्जैन के विक्रमादित्य और प्रतिष्ठान के सालीवाहन का उल्लेख अलग अलग करता है। गौतमी पुत्र के लिए वारण विक्रम चारु विक्रम का प्रयोग किया गया है, परंतु विक्रमादित्य से इसका कोई संबंध नहीं। सम्मिलित राज्य सर और जी भंडारकर का मत है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी और उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी दोनों ने कुछ समय तक साथ साथ राज्य किया। गौतमी पुत्र ने धनकत में और वशिष्ठ पुत्र ने प्रतिष्ठान में। इस मत की पुष्टि में कहा गया है कि पुलमावी के 11वें-19वें वर्ष के नाशिक अभिलेख के गौतमी वंश की माता और पितामह ही दोनों ही कहा गया है। इससे प्रकट होता है कि गौतमी पुत्र और पौत्र दोनों ही जीवित थे और दोनों ही साथ साथ राज्य करते थे, परंतु भंडारकर महोदय का मत असंगत प्रतीत होता है। पहला, गौतमी वर्षी को उपयुक्त अभिलेख में माता और पितामह ही अवश्य कहा गया है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उसके पुत्र और पौत्र दोनों जीवित थे। दूसरा, उसके पुत्र ने अपने पिता के पुण्यार्थ एक गुहा दान दिया था। सेनोट महोदय का मत है कि इससे यह सिद्ध होता है कि उसका पिता उस समय तक मर चुका था। तीसरा, पुलमावी के उपयुक्त नाशिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी ही सफल सिंधु और परित्राण के मध्य का प्रदेश और अपरांत पर अधिकार कर लिया था। पहले ये प्रदेश गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन थे। आंध्र प्रदेश निम्नलिखित साक्ष्य से विदित होता है कि पुलमावी का अधिकार आंध्र प्रदेश पर था। पहला, नाशिक अभिलेख में उसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश में उसकी मुद्राएं मिली हैं। तीसरा, कारोमंडल तट पर उसकी मुद्राएं मिली हैं। चौथा, अमरावती में उसके शासनकाल का एक अभिलेख मिला है। इस प्रकार वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने आंध्र प्रदेश को जीतकर उत्तरी प्रदेशों की क्षति की पूर्ति की। राज्य विस्तार उपलब्ध साक्ष्यों से प्रकट होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी में साम्राज्य में महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश और कदाचित कारोमंडल तट सम्मिलित थे। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गौतमी पुत्र की अंतिम तिथि 130 ईस्वी मिली है। कार्ले अभिलेख में पुलमावी के शासनकाल की तिथि 24 मिली है। इससे प्रकट होता है कि उसने कम से कम 130 के 24वें 154 ईस्वी तक राज्य किया। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश का यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। पुराणों के अनुसार यह राजा गौतमी पुत्र के 35 वर्ष पश्चात शासक हुआ था। इससे प्रकट होता है कि 130 प्लस 35 165 ईस्वी में शासक हुआ। चिन्ह अभिलेख में प्रकट होता है कि इसकी अंतिम तिथि 27 थी, अतः उसने 165 प्लस 27 193 ईस्वी तक अवश्य राज्य किया होगा। यह बड़ा पराक्रमी राजा और उसके अनेक प्रदेशों पर फिर से अधिकार स्थापित किया जिन्हें शकों ने उसके पूर्वजों से छीन लिया था। उसकी मुद्राएं गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में पाई गई हैं। शकों की मुद्राओं के आधार पर बनी हुई उसकी चांदी की मुद्राएं भी उसकी शक विजय की ओर संकेत करती हैं। इस प्रकार यज्ञश्री सातकर्णी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का राजा था। उसकी कुछ मुद्राओं पर मछली और जहाज के शंख के चित्र हैं। इससे प्रकट होता है कि इसका राज्य समुद्र तट पर विस्तृत था और इसके शासनकाल में पर्याप्त व्यापारिक उन्नति हुई थी। पतन यज्ञ से सातकर्णी के पश्चात सातवाहन में कोई भी ऐसा पराक्रमी राजा न हुआ जो कि अपने वंश के राज्य को संरक्षित रख सकता था। उसके पश्चात राज्य की उत्तरोत्तर उन्नति हुई। कालांतर में महाराष्ट्र के ऊपर आभीर वंश के ने और पूर्वी दक्षिणापथ पर इक्ष्वाकु और पल्लव वंश ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तीसरी शताब्दी तक सातवाहन राजवंश का विलोप हो गया। कलिंग राज खारवेल। कलिंग, हम पीछे देख चुके हैं कि किस प्रकार अशोक ने भीषण युद्ध के पश्चात कलिंग के ऊपर अधिकार स्थापित किया था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक की मृत्यु के पश्चात कलिंग अधिक समय तक मौर्य साम्राज्य में न रहा, यह स्वतंत्र हो गया। हाथी गुम्फा अभिलेख। उड़ीसा प्रांत के पुरी जिले में भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख महामेघवाहन वंश के महाराज खारवेल का उल्लेख करता है जो कलिंग के सर्वशक्तिमान स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य कर रहा था। अभिलेख की लिपि अशोक काल के पश्चात की है, अतः यह निश्चित है कि खारवेल का उदय अशोक के पश्चात किसी समय हुआ होगा। महामेघवाहन। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल चेति वंश का था। यह सुरवंशी राजश्री वशु का वंशज था। महामेघवाहन इस वंश का सर्वप्रमुख ऐतिहासिक राजा प्रतीत होता है। बरुआ महोदय का मत था कि महामेघवाहन वंश का समीकरण पुराणों में वर्णित मेघाओं से करना चाहिए, परंतु यह असंगत प्रतीत होता है। महामेघवाहन कलिंग का राजा था, जबकि पुराणों के अनुसार मेघवंश का राज्य कौशला में था। अभी तक हम कलिंग के चेदि वंश के 3 शासकों का ही नाम जानते हैं, पहला महामेघवाहन, दूसरा खारवेल, तीसरा महाराज कुदेव, जिनका उल्लेख पातालपुर गुहालेख में हुआ है। खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि राजा होने के पूर्व खारवेल को अनेक प्रकार की शिक्षा दी गई थी। वह मुद्रा, गणना, व्यवहार विधि इत्यादि विषयों में निपुण हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में वह युवराज नियुक्त हुआ। युवराज की अवस्था में उसने 9 वर्ष तक शासन संचालन में योग दिया। जब वह 24 वर्ष का हुआ तो कलिंग के राज सिंहासन पर बैठा। उसकी महारानी ललक हत्थी सिंह नामक एक राजा की पुत्री थी। डॉक्टर जसवाल का मत था कि हाथी गुम्फा अभिलेख की 7वीं पंक्ति में खारवेल की एक रानी का उल्लेख है, परंतु बरुआ महोदय ने जसवाल महोदय के पाठ को अशुद्ध बताया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के शासन का वार्षिक ब्यौरा मिलता है। प्रथम वर्ष उसने अपनी राजधानी कलिंग नगर में अनेक निर्माण कार्य किए। एक भीषण तूफान से राजधानी के प्रमुख द्वार और प्राचीर टूट गए थे। खारवेल ने उनकी मरम्मत करवाई। उसके अतिरिक्त दुर्गों का भी जीर्णोद्धार किया गया। राजधानी की सुंदरता प्रदान करने के लिए खारवेल ने शीतल जल से युक्त और सीढ़ियों से अलंकृत तड़ांगों का निर्माण कराया। तदुपरांत 35 लाख मुद्रा धन लगाकर उसने जनता के मनोविनोद का प्रबंध करवाया। इस प्रकार अपने घर को सुव्यवस्थित करने के पश्चात खारवेल ने युद्ध की दुंदुभी बजाई। दूसरे वर्ष उसने सातकर्णी को तुच्छ समझते हुए अपनी एक विशाल सेना पश्चिम दिशा की ओर भेजी। यह सेना कर्णबेला नदी तक पहुंच गई और उसने मूषिक नगर को आतंकित कर दिया। इस नदी की और इस नगर के समीकरण के विषय में विद्वानों में मतभेद है। रपसन और बरुआ का मत है कि कर्णबेला का अर्थ बेन गंगा और उसकी सहायक नदी कन्हन से है, तथा मूषिक नगर को गोदावरी की घाटी में स्थित उसी का नाम का नगर समझना चाहिए जो असिको की राजधानी था। परंतु इसके विरुद्ध जसवाल महोदय ने कर्णबेला का समीकरण कृष्णा नदी से किया है। इनकी राय में मूषिक नगर कृष्णा और मूसी नदियों के संगम के समीप स्थित था। यद्यपि हाथी गुम्फा अभिलेख में युद्ध का वर्णन नहीं मिलता, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध के खारवेल को सातवाहन नदी सातकर्णी के विरुद्ध काफी सफलता मिली थी। इस समय अभियान के पश्चात जब खारवेल कलिंग वापस लौटा तो उसने राजधानी में उत्सव मनाया जिसमें ये आधुनिक दरबार और पूर्वी खानदेश में राज्य करते थे। ये लोग पराजित हुए और विवश होकर इन्हें खारवेल की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध के संबंध में विद्याधरों का उल्लेख किया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में एक मथुरा अभिलेख से प्रकट होता है कि विद्याधारी जैनियों की एक शाखा थी। प्रमुख बहुत संभव है कि जैन धर्मावलंबी खारवेल ने विद्याधारी जैनियों के हितों की रक्षा के लिए यह आक्रमण किया हो। 5वें वर्ष उसने तनुशूली से लेकर अपनी राजधानी तक एक नहर विस्तार करवाया। इस नहर का निर्माण नंदराज ने 300 वर्ष पूर्व किया था। संभवतः यह नंदराज मगध का महापदम था। तत्पश्चात अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हुए खारवेल ने अपनी ग्रामीण और नागरी प्रजा के अनेक कर माफ कर दिए। डॉक्टर जसवाल का मत है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल द्वारा किए गए राजस्व यज्ञ का उल्लेख है, परंतु बरुआ महोदय ने इसका खंडन किया है और राजस्व के स्थान पर राजश्रियम पढ़ा है। इसके पश्चात खारवेल ने उत्तरी भारत की ओर ध्यान दिया। अपनी शासन के 8वें वर्ष अपने उत्तरी भारतवर्ष पर आक्रमण किया। उसकी सेनाएं गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ियों को पार करती हुई आगे बढ़ी। मार्ग में उन्होंने दुर्गों को नष्ट किया और अंत में राजगिरी को घेर लिया। उसके आक्रमण से यमन राज की सेना ने में आतंक छा गया और वह भयभीत होकर मथुरा भाग गया। हम पहले कह चुके हैं कि बैक्ट्रिया में यूकेटाइडीज के आक्रमण में डेमेटियस की भारत छोड़कर वापस जाना पड़ा था। उसी के साथ साथ उसका सेनापति मिनेंडर भी पाटलिपुत्र को छोड़कर मथुरा आ गया था। अतः यूनानियों के भागने का कारण खारवेल का आक्रमण नहीं हो सकता। कुछ विद्वान अभिलेख के दिमित को पंजाब का कोई छोटा यूनानी राजा मानते हैं। इसके विरुद्ध कुछ विद्वान अभिलेख में दिमित का नाम पढ़ते ही नहीं। कुछ भी हो, अभिलेख की यह पंक्ति नितांत विवादग्रस्त है। नवे वर्ष खारवेल ने प्राची नदी के दोनों ओर पर एक महाविजय प्रासाद बनवाया। कदाचित यह प्रासाद उत्तरी भारतवर्ष की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया हो। दसवें वर्ष उसने फिर भारतवर्ष पर आक्रमण किया, परंतु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस आक्रमण का क्या परिणाम हुआ। 11वें वर्ष में खारवेल ने फिर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और पिथुंड नगर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह आगे बढ़ता गया और पांडव देश तक पहुँच गया। वहाँ के राजा ने उसे मणिमुक्ताओं के उपहार भेजे। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने प्रारंभिक दो आक्रमण में खारवेल को उत्तरी भारतवर्ष में अधिक सफलता न मिली थी, अतः उसने अपने शासन में 12वें वर्ष फिर उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने अपने हाथी घोड़ों को गंगा में स्नान करवाया। डॉक्टर जसवाल ने इस स्थान पर मौर्यों के राज प्रसाद सुगांग का अर्थ लगाया था, परंतु यह असंगत प्रतीत होता है। मगध नरेश बृहस्पति मित्र ने खारवेल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। डॉक्टर जसवाल ने बृहस्पति मित्र का समीकरण पुष्यमित्र सुंग के साथ किया है, परंतु अधिकांश विद्वानों इसे अस्वीकार कर दिया। जो भी हो, खारवेल प्रचुर धनराशि लेकर कलिंग वापस लौटा। डॉक्टर जसवाल ने यहाँ कलिंग जीन पड़ा है और यह अब निकला यह अर्थ निकाला कि लूट की सामग्री के साथ खारवेल कलिंग के जिन शीतलनाथ की मूर्ति भी वापस ले गया था, जिसे नंदराज कलिंग से उठा ले गया था, परंतु बरुआ महोदय ने कलिंग जीन के स्थान पर कलिंग जन पड़ा है। इस प्रचुर धन की सहायता से खारवेल ने अपने राज्य में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ब्राह्मण पुराण की एक उड़िया प्रति में उल्लेख है कि खारवेल ने भुवनेश्वर एक मंदिर बनवाया था। संभवतः दोनों साक्ष्य एक ही मंदिर का उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण पुराण में भी यह उल्लेख है कि खारवेल ने नेपाल पर आक्रमण किया था, परंतु हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। खारवेल का धर्म। खारवेल जैन धर्मावलंबी था। उसने उदयगिरी के पहाड़ी पर जैन सन्यासियों के निवास के लिए गृह बनवाए थे। उसके साथ ही साथ उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का भी निर्माण करवाया था। इस भवन में विशाल स्तंभ थे तथा यह 64 स्थापत्य कृति समूह से अलंकृत किया गया था। डॉक्टर जसवाल का मत था कि खारवेल ने जैन भिक्षुओं की संगीति भी की थी और उसमें जैन ग्रंथों का संकलन करवाया था, परंतु बरुआ महोदय ने इस अर्थ का खंडन किया है। जैन धर्मावलंबी होते हुए भी खारवेल अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु प्रतीत होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख का कथन है कि उसने समस्त देवताओं का जीर्णोद्धार करवाया था। खारवेल अपने समय का एक पराक्रमी विजेता था। उसकी रानी के अभिलेख में उसके लिए चक्रवर्ती की उपाधि का प्रयोग किया गया है। उसकी विजयों को देखते हुए यह उपाधि न्यायोचित प्रतीत होती है। खारवेल की शासन तिथि, इस प्रश्न पर विद्वानों में भारी मतभेद है, परंतु समस्त साक्ष्यों को देखते हुए खारवेल की शिव पर प्रथम शताब्दी में रखना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस मत की पुष्टि में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला, खारवेल के 300 वर्ष पूर्व मगध में महापद्मनंद राज्य कर रहा था। हम जानते हैं कि महापद्मनंद का शासनकाल इससे पूर्व 4वीं शताब्दी था, अतः खारवेल का काल शिव पर प्रथम शताब्दी हुआ। दूसरा, खारवेल सातकर्णी का समकालीन था। अधिकांश विद्वानों के मत में यह सातकर्णी प्रथम था। इसका काल ईसापूर्व प्रथम शताब्दी था, यही काल खारवेल का भी होगा। तीसरा, मंचपुरी गुफा की स्थापत्य कृतियां महामेघवाहन के समय की है। ये बरहूत की स्थापत्य कृतियों के काफी बात की है। बरहूत स्थापत्य शुंगकालीन है, अतः मेघवाहन का काल शुंगकाल के बाद का होगा। खारवेल महामेघवाहन के बाद ही हुआ, इसलिए खारवेल का काल ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में रखना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। चौथा, हाथी गुम्फा अभिलेख की लिपि बेशनगर अभिलेख की लिपि से बात की है। बेशनगर अभिलेख की लिपि ईसवी पूर्व द्वितीय शताब्दी की है, अतः हाथी गुम्फा अभिलेख लिपि में ईसापूर्व प्रथम शताब्दी की ही होनी चाहिए। राजा खारवेल के मगध और अंग पर आक्रमण किए थे। यह आक्रमण निश्चित रूप से सुंगों के पश्चात ही हुए होंगे, अतः खारवेल की ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में रखना ही ठीक है। बरुआ, चंदा और राय चौधरी आदि विद्वानों ने भी खारवेल को प्रथम शताब्दी में ही रखा है।